आगे सबक देखिए भाई। काला वलौ हलफला यतदिमु फकुल्लु शैइन इस्तुबिग बिही इदामुन वश्शिवा उलैस बिइदामिन वल्मिल्हु इदामुन वहादा इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाहु तआला وقال محمد رحمه الله تعالى كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله। भाई गुज़श्ता सबक में हमने बाबुल यमीन फिल अक्ल व शुर्ब शुरू किया था। इस बाब के अंदर साहिब हिदाया उस यमीन को बयान फरमा रहे हैं जिसके अंदर खाने और पीने का जिक्र हो। तो अगर कोई शख्स कसम उठाकर कहता है कि वल्लाह मैं इस खजूर के दरख्त में से नहीं खाऊंगा, अब इस कलाम का एक हकीकी माना है और एक मजाजी माना है। हकीकी माना यह है कि मैं इस खजूर के दरख्त को नहीं खाऊंगा, यानी इसके तने या पत्तों वगैरह को नहीं खाऊंगा, और एक इस कलाम का मजाजी माना है कि मैं इस दरख्त के फल को नहीं खाऊंगा। तो इस सूरत में यहां पर ये जो दरख्त का तना खाना या पत्ते खाना ये तो मुताअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है या मुश्किल है भाई। तो इस सूरत में अब हकीकी माना मुराद नहीं लिया जाएगा बल्कि मजाजी माना मुराद दिया जाएगा, क्योंकि आप उसूल फिका के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हकीकी माना पर अमल मुमकिन न हो तो फिर मजाजी माना की तरफ रुजू करते हैं। लिहाजा ये शख्स अब इस तरह के फल खाएगा तो हानिस हो जाएगा, लेकिन अगर उसने तकल्लुफ करके किसी तरह इस तरह के पत्ते या तने को कुछ हिस्से को चबा कर खा लिया तो इससे हानिस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मजाजी माना मुतायन हो चुका है भाई। लेकिन इसके अंदर यह जरूरी है कि खजूर के इस फल को किसी कारीगरी के जरिए बदला ना जाए, लिहाजा अगर इस खजूर के फल से नबीस तैयार कर ली या सिरका तैयार कर लिया या इसके शीरे को पका लिया तो यह तो इसकी सूरत और माहियत ही बदल दी कारीगरी के जरिए, लिहाजा ये चीजें इस्तेमाल करने से वो हानिस नहीं होगा भाई। और अगर इसी तरह किसी शख्स ने यह कसम उठाई कि वल्लाह मैं ये वली बुसर नहीं खाऊंगा, मैंने आपको बतलाया था कि खजूर जो है इसकी तीन हालतें हैं भाई। इब्तिदा में दरख्त पर कच्चा फल लगता है और फिर एक वक्त आता है कि फल पकने लगता है, तो सबसे पहले उस फल का रंग बदलता है और वो जर्द रंग का या सुर्ख रंग का हो जाता है। अभी भी वो सख्त ही है लेकिन उसमें काफी हद तक मिठास आ गई है और इसको बुसर कहते हैं और इसको भी खाया जाता है। और फिर उसके बाद इस बुसर पर चंद दिन गुजरते हैं तो इसके बाद इसका निचला किनारा जो है वो नरम होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी खजूर नरम हो जाती है, तो इसको रुतब कहते हैं यानी ताजा खजूर। लेकिन ये जो रुतब है इसके अंदर रस ज्यादा होता है, लिहाजा इसे दरख्त से उतार कर फौरन ही बेचने के लिए बाजार नहीं लाया जाता, क्योंकि रस ज्यादा होने की वजह से एक दो दिन में ही ये खराब हो जाएगी। लिहाजा फिर इसको थोड़ी धूप लगवाई जाती है, कुछ देर कुछ मुद्दत इसको धूप में रखते हैं ताकि जो जायद रस है जो जायद शीरा है वो खुश्क हो जाए। अब ये जब जायद शीरा खुश्क हो गया अब इसको तम्र कहते हैं यानी खजूर। तो ये जो बाजार में हम खजूर खरीदते हैं ये तम्र है भाई, तम्र है। मैंने बताया बाज उलमा तम्र का माना छुहारे के करते हैं, लेकिन तम्र जो है बिलखसूस छुहारे को नहीं कहते भाई, हो सकता है छुहारे को भी तम्र कहा जाता हो, लेकिन ये आम खजूर जो है इसको तम्र कहा जाता है भाई। अब एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह ये वली बुसर मैं नहीं खाऊंगा और फिर वो बुसर रुतब बन गई और उसने उसको खा लिया तो क्या हानिस होगा या नहीं? तो फुकहा फरमाते हैं नहीं, इसकी सूरत ही बदल गई, नाम ही बदल गया, लिहाजा इसके खाने से अब हानिस नहीं होगा। और मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि अगर सिफत जो है वो ऐसी हो कि जो यमीन की तरफ दाई बन सके, यमीन की तरफ ले जाने वाली बन सकती है, तो फिर यमीन उस सिफत के साथ मुकय्यद होगी वरना मुकय्यद नहीं होगी। और यहां पर बुसर होना ये ऐसी सिफत है कि जो यमीन का बाइस बन सकती है। हो सकता है एक दरख्त की बुसर लजीज ना हो, अच्छी ना हो, तो एक आदमी कह दे कि मैं इसकी बुसर नहीं खाऊंगा भाई, तो लिहाजा यह कसम बुसर के साथ मुकय्यद होगी। और अगर एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह मैं रुतब नहीं खाऊंगा और फिर उसने उसको जब वो धूप में खुश्क हो गई, तमर बन गई, फिर खाया, तो इस सूरत में भी हानिस नहीं होगा क्योंकि अब नाम बदल चुका है भाई। और रुतब होने की सिफत जो है ये दाई इलल यमीन बन सकती है। हो सकता है इस दरख्त की रुतब इतनी अच्छी ना हो, हो सकता है इस दरख्त की रुतब ऐसी हो कि लोग उसके खाने को पसंद न करते हों भाई। और इसी तरह अगर एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह ये दूध मैं नहीं पीऊंगा और फिर उस दूध का दही बन गया और उसने खा लिया, तो फिर वो हानिस नहीं होगा क्योंकि दूध होने की सिफत ये दाई इलल यमीन बन सकती है। हो सकता है उस दूध का ऐसा जायका है कि कसम खाने वाले को वो पसंद नहीं है भाई। बखिलाफ इसके कि अगर किसी शख्स ने कसम उठा ली कि वल्लाह मैं इस बच्चे से या जवान से बात नहीं करूंगा और फिर उसके बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने उसके साथ बात की, तो इस सूरत में फुकहा फरमाते हैं ये हानिस हो जाएगा। वजह यह कि बच्चा होना या जवान होना ये सिफत ऐसी है जो कसम के लिए दाई बन सकती है, लेकिन शरीयत के अंदर किसी मुसलमान से ताल्लुक तोड़ने को और बातचीत न करने को मना किया गया है, यानी शरअन ये सिफत दाई नहीं है। और जब शरअन दाई इसको शुमार नहीं किया जाता तो आदतन भी इसको दाई शुमार नहीं किया जाएगा। हकीकत में यह दाई है लेकिन आदतन इसको दाई शुमार नहीं किया जाएगा। और यह भी याद रखना यह उस सूरत में है जब इस शख्स ने कोई नीयत नहीं की थी जी। तो उसने कहा था मैं इस बच्चे से बात नहीं करूंगा या इस जवान से बात नहीं करूंगा और नीयत नहीं की और फिर बूढ़ा होने के बाद बात की, तो हानिस हो जाएगा क्योंकि यहां यह सिफत मोतबर नहीं है बल्कि उसकी जात मुराद है, और जात तो वही है चाहे बूढ़ा भी हो जाए भाई। लेकिन उलमा और फुकहा फरमाते हैं ये उस सूरत में है जब इसने कोई नीयत नहीं की थी। अगर इसकी नीयत इसी बचपने की हालत की है, क्योंकि बच्चा जो है वो कम अकल होता है, या इसकी नीयत जो है उसी जवानी की सिफत की है, क्योंकि जवान जो है वो भी बाज़ात ऐसे अफ़ाल करता है जो कोई ज्यादा पसंदीदा नहीं होते, तो फिर इस सूरत में इसकी नीयत मोतबर होगी भाई। बात समझ में आ गई? तो ये वो सूरत है जब उसकी नीयत ना हो गई। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह इस भेड़ के बच्चे का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा और फिर वो भेड़ का बच्चा बड़ा हो गया, दुम्बा बन गया, अब उसने गोश्त खाया, तो इस सूरत में भी हानिस हो जाएगा। वजह यह कि यह जो सिफत है यह कसम के लिए दाई नहीं बन सकती। भेड़ का बच्चा होना यह तो ज्यादा दाई है उसके गोश्त के खाने का, और ये जब भेड़ के बच्चे के गोश्त के खाने से रुक रहा है तो मालूम हुआ ये उसके बड़े होने के बाद इसके गोश्त खाने से बतरीके औला रुकेगा भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा यहां भी उस हैवान की जात ही मुराद होगी और वो जब भी उसका गोश्त खाएगा वो हानिस हो जाएगा भाई। इसी तरह एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह मैं रुतब या बुसर नहीं खाऊंगा और फिर उसने बुसरे मुजन्निब या रुतबे मुजन्निब खा ली, तो इमाम साहब के नजदीक ये हानिस हो गया क्योंकि बुसरे मुजन्निब बुसर भी है और रुतब भी है। इसी तरह रुतबे मुजन्निब रुतब भी है और बुसर भी है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां अक्सर का एतबार है। अगर उसने रुतब की कसम खाई है और बुसरे मुजन्निब खाया तो उसके तो ज्यादा हिस्सा बुसर है, लिहाजा यह हानिस नहीं होगा। और अगर इसने बुसर की कसम खाई है और रुतबे मुजन्निब खा लिया तो रुतबे मुजन्निब का ज्यादा हिस्सा तो रुतब है, लिहाजा इसके खाने से वो हानिस नहीं होगा। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे खरीदने की कसम है। एक आदमी कहता है वल्लाह मैं बुसर नहीं खरीदूंगा और फिर इसने रुतब का गुच्छा खरीदा, लेकिन रुतब के गुच्छे में कुछ बुसर भी थी, लेकिन रुतब गालिब हैं और बुसर मगलूब हैं, तो इसके अंदर कुछ बुसर भी थी तो भी ये इस गुच्छे को खरीदने से बिल इत्तेफाक हानिस नहीं होगा। तो इसी तरह खाने के अंदर भी गालिब ही का एतबार किया जाएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि जब एक शख्स ने बुसरे मुजन्निब खाई तो उसने बुसर भी खा ली और रुतब भी खा ली, और ये दोनों खाने के एतबार से मकसूद होती हैं, लिहाजा ये हानिस हो जाएगा भाई। लेकिन अगर यही मसला खरीदने में पेश आया तो फिर वो हानिस नहीं होगा। था। वजह यह कि खरीदने का फेल सारे मजमुए पर इकट्ठा ही वाके होता है। जिस वक्त आपने अकद किया तो सारे ही गुच्छे का अकद किया है तो उसमें गालिब का एतबार करेंगे, लेकिन खाते हुए तो आप एक एक खजूर खाते हैं तो वहां पर हर खजूर गोया अलग मकसूद है, उसका हर जुज अलग मकसूद है भाई। और इसी तरह साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि किसी शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह वो गोश्त नहीं खाएगा और फिर उसने मछली का गोश्त खा लिया तो हानिस नहीं होगा, क्योंकि उर्फ के अंदर मछली पर गोश्त का इतलाक नहीं होता और नीस हकीकत के एतबार से भी वो गोश्त नहीं है, क्योंकि गोश्त तो खून से बनता है और मछली के अंदर तो खून नहीं होता क्योंकि वो पानी में रहती है, पानी के हैवानात में खून नहीं होता भाई। लेकिन अगर किसी उर्फ के अंदर मछली के गोश्त पर गोश्त का लफ्ज बोला जाता है तो फिर उस उर्फ में वो मछली खाने से भी हानिस हो जाएगा। और इसी तरह अगर इस शख्स ने कसम खाई है कि वल्लाह मैं गोश्त नहीं खाऊंगा तो खिंजीर या इंसान का गोश्त खाएगा तो फिर हानिस हो जाएगा। मतन में यह आया इसलिए क्योंकि खिंजीर का गोश्त और इंसान का गोश्त भी गोश्त ही है, अगरचे वो हराम है। खिंजीर का गोश्त नजस होने की वजह से हराम है और इंसान का गोश्त मुअज्जज होने की वजह से हराम है, लेकिन बहरहाल हराम या हलाल होने से कसम का ताल्लुक नहीं है। कसम तो उस चीज को जब खाएगा, उस फेल को करेगा तो हानिस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि उलमा फरमाते हैं कि सही कौल यह है कि खिंजीर या इंसान का गोश्त खाने से हानिस नहीं होगा, क्योंकि कसम का दारोमदार उर्फ पर होता है और उर्फ के अंदर तो ये खाए नहीं जाते, लिहाजा ये मुराद भी नहीं होंगे। ये इसी तरह है जैसे ये कसम खाई कि वल्लाह मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और फिर इसने कच्चा गोश्त थोड़ा सा खा लिया तो हानिस नहीं होगा, क्योंकि उर्फ के अंदर गोश्त को कच्चा नहीं खाया जाता। और इसी तरह अगर इस शख्स ने गोश्त के न खाने की कसम खाई और फिर इसने कलेजी या ओजड़ी खा ली तो कलेजी और ओजड़ी जो है इनको भी बाज जगह गोश्त ही शुमार किया जाता है तो उस उर्फ के मुताबिक वो हानिस हो जाएगा। और बाज उर्फों में मसलन जैसे बरसगीर वगैरह में है ये कलेजी और ओजड़ी को गोश्त शुमार नहीं किया जाता तो इस उर्फ में फिर यह हानिस नहीं होगा अगर कलेजी या ओजड़ी को खा ले। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने शहम के बारे में जिक्र किया, शहम चर्बी को कहते हैं और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि चर्बी की तीन किस्में हैं। एक चर्बी वो है जो हैवान के पेट पर होती है, वो सारी चर्बी होती है, और एक चर्बी वो है जो कमर पर होती है, पुश्त पर होती है, और वो थोड़ी सी होती है, उसके साथ ज्यादातर गोश्त होता है, और तीसरी चर्बी वो है वो जो दुम्बे की बड़ी सी दुम होती है चर्बी वाली, तो वो तीसरी किस्म है चर्बी की। लिहाजा एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं चर्बी नहीं खरीदूंगा या मैं चर्बी नहीं खाऊंगा और फिर इस सूरत में उसने पेट की चर्बी खाई या खरीदी तो वह हानिस हो जाएगा, और अगर कमर की चर्बी खाई या खरीदी तो हानिस नहीं होगा। यह इमाम साहिब के नजदीक है, जबकि साहिबैन के नजदीक पेट की चर्बी खरीदे चाहे कमर की चर्बी खरीदे दोनों सूरतों में हानिस हो जाएगा भाई। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह वो इस गंदुम में से नहीं खाएगा तो इसका एक हकीकी माना है कि मैं ये ऐन गंदुम नहीं खाऊंगा, और एक इसका मजाजी माना है कि मैं इस गंदुम से बनी हुई रोटी नहीं खाऊंगा। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब हकीकी माना इस्तेमाल होता हो तो फिर मजाजी माना की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे मजाजी माना मशहूर ही क्यों ना हो, मुतआरफ ही क्यों ना हो। मसलन देखो उर्फ के अंदर देखो गंदुम को उबाल कर भी खाया जाता है और भून कर भी खाया जाता है, और इसी तरह गंदुम को पीस कर उससे रोटी बनाकर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर उसको रोटी बनाकर खाया जाता है। तो इस कसम का मजाजी माना क्या हुआ, उसने क्या कहा है कि वल्लाह मैं ये गंदुम नहीं खाऊंगा, तो इसका मजाज मुतारफ ये है कि मैं इस गंदुम की रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन हकीकी माना भी इस्तेमाल होता है अगरचे वो कलील है। तो इमाम साहब का जाब्ता ये है कि जब हकीकी माना भी मुस्तमल हो और उसके साथ एक मशहूर मजाजी माना भी हो जिसमें वो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है तो इस सूरत में भी हकीकी माना औला है मजाजी माना के मुकाबले में, लिहाजा हकीकी माना ही मुराद लिया जाएगा। तो ये शख्स आए ना इसी गंदुम को بھون کر یا اُبال کر اور پھر چبا کر کھائے گا تو حانث ہوگا، اگر اس گندم کی روٹی کھائے گا تو پھر حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مجازی معنی ہے بھائی، اور ہم نے حقیقی معنی مراد لے لیا. جبکہ صاحبین کے نزدیک جب حقیقت بھی استعمال ہو رہی ہے اور مجاز بھی ہے، اور مجاز زیادہ مشہور ہے حقیقت کے مقابلے میں، تو پھر اس صورت کے اندر عموم مجاز پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جاتا ہے کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے. تو اس شخص کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندم میں کسی صورت بھی نہیں کھاؤں گا، چاہے اسی طرح دانوں کی صورت میں ہو چاہے روٹی کی صورت میں ہو، میں کسی طرح بھی اس گندم کو نہیں کھاؤں گا. تو اب وہ اس گندم کو چبا کر کھائے پھر بھی حانث ہو جائے گا، اور اس کی روٹی کھائے تو پھر بھی حانث ہو جائے گا. تو صاحبین نے اس کو عموم مجاز پر محمول کیا بھائی. اور یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. اب قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ ننگے پاؤں اس کے گھر کے اندر جا کر قدم رکھے، تو دیکھو یہ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا ہے. اور مجازی معنی یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ اس کے گھر میں وہ قدم رکھے بھائی. تو اب حقیقی معنی کیا؟ ننگے پاؤں قدم رکھنا. اور مجازی معنی کیا؟ جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ قدم رکھنا. تو یہاں پر اس صورت میں بالاتفاق عموم مجاز مراد ہوگا، یعنی ایسا مجازی معنی مراد لیں گے کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے، اور وہ اس طرح کہ اس قدم رکھنے سے داخل ہونا مراد لیا جائے گا. تو اس شخص نے کہا واللہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، مطلب یہ ہے میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اب داخل ہونا یہ تو مجازی معنی ہے، لیکن یہ مجازی معنی عام ہے، اتنا عام ہے کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو گیا. اب یہ جس طریقے سے بھی اس کے گھر میں قدم رکھے، چاہے ننگے پاؤں قدم رکھے، چاہے جوتے کے ساتھ قدم رکھے، چاہے سواری کے ساتھ قدم رکھے، تمام صورتوں میں یہ حانث ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں عموم مجاز، یعنی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ آٹا نہیں کھاؤں گا، اب یہ آٹا جو ہے اس کو تو روٹی بنا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ویسے نہیں کھایا جاتا، تو لہذا یہاں پر بھی مجازی معنی ہی متعین ہو گیا. تو اب یہ اس آٹے کی روٹی کھائے گا تو یہ شخص حانث ہوگا، اگر اسی آٹے کو اس نے صفوف کی طرح پھانک لیا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مجازی معنی متعین ہو چکا ہے بھائی. اور پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو اس شہر کی اس علاقے کے اندر جو معتاد روٹی ہے جو عادتاً لوگ کھاتے ہیں وہ مراد ہوگی. اور اگر اس نے کوئی خاص قسم کی روٹی کھا لی جس کی لوگوں میں عام عادت نہیں ہے تو پھر حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت کرے تو نیت ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خاص روٹی بھی ہے تو روٹی ہی بھئی. پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ کوئی بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، تو اس کو مطلق ذکر کیا ہے، تو یہ محمول ہوگی گوشت پر، یہ بھنا ہوا گوشت کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، کوئی اور چیز بھنی ہوئی کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں طبیخ نہیں کھاؤں گا، تو طبیخ جو ہے وہ پکائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جس چیز کو پکایا گیا ہو اس کو طبیخ کہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بھی اس کو استحسان لحم پر محمول کیا جائے گا. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی پکی ہوئی چیز یہ کھائے اس کو حانث ہونا چاہیے، لیکن تمام چیزوں کو تو قسم میں داخل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہو سکتا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے عرف میں پکا ہوا گوشت مراد دیا جاتا ہے، تو پھر استحسانا قسم بھی اسی پر محمول ہوگی، یعنی وہ گوشت جسے پانی کے ساتھ پکایا گیا ہو، تو اس گوشت کو یہ کھائے گا تو حانث ہو جائے گا. اور اگر یہ اس گوشت کے شوربے کو بھی استعمال کرے گا تو بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ اس شوربے کے اندر، اس سالن کے اندر بھی گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں، گوشت کے اجزاء اس میں ملے ہوتے ہیں، گوشت کا ذائقہ اس کے اندر ملا ہوتا ہے. اور اگر اس نے اس طبیخ سے کوئی خاص چیز کی نیت کی تو پھر اس صورت میں گوشت کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اوپر مزید سختی کر رہا ہے کہ اور چیزوں کو بھی ساتھ ملا رہا ہے بھائی. اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں سیری نہیں کھاؤں گا، तो इस सूरत में वो सिरी मुराद होगी जिसको उस शहर में पकाकर बेचा जाता है, जिसको उस शहर में पकाकर आम खाया जाता है, वो मुराद होगी। लिहाजा अगर ये मुर्गी की सिरी पकाकर खा लेता है तो फिर ये हानिस नहीं होगा भाई। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं फाकेहा नहीं खाऊंगा, तो फाकेहा वो चीज जिसको बतौर लज्जत के खाने से पहले या खाने के बाद खाया जाता है, तो इमाम साहब के नजदीक ये सेब या खुबानी या नाशपाती वगैरह ये चीजें खाने से तो हानिस हो जाएगा, लेकिन अगर इसने अंगूर अनार या ताजा खजूरें खाई तो फिर हानिस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इनके अंदर तफक्कुह के माना की कमी है जी। क्योंकि इनको सिर्फ बतौर लज्जत के ही नहीं खाया जाता बल्कि बतौर गजा के या बतौर दवा के भी इस्तेमाल किया जाता है। खजूर जो है इसको भी बतौर गजा के खाया जाता है, बाजों का सिर्फ इसी को खाकर आदमी गुजारा कर लेता है, रोटी खाता ही नहीं। इसी तरह अंगूर जो है इसको भी खुश करके किशमिश बना लेते हैं, बाजात इंसान उसी पर गुजारा कर लेता है, रोटी खाता ही नहीं है। और नीज अनार जो है इसको कभी कभार खुश करके बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा इमाम साहब फरमाते हैं ये चीजें सिर्फ फाकेहा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती बल्कि गजा या दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा इनमें फाकेहा के माना की कमी आ गई। जब कमी आ गई तो ये अब इस कसम में दाखिल नहीं, तो इनके खाने से हानिस नहीं होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं इनके खाने से भी ये हानिस हो जाएगा क्योंकि ये सबसे आला फल है, इनमें औरों से ज्यादा लज्जत है, तो इनके खाने से भी हानिस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال ولو حلف لا يأتدم فكل شيء استبغ به إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله। भाई सूरत है मसला ये, एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं इदाम नहीं खाऊंगा। इदाम अरबी जुबान में सालन को कहते हैं, सालन और शोरबा। तो एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं इदाम नहीं खाऊंगा, तो अब क्या चीज खाने से वो हानिस होगा और क्या चीज खाने से वो हानिस नहीं होगा जी। तो आपको बतलाएंगे कि भाई इदाम वो चीज है कि जिसके साथ रोटी लगाकर खाई जाती है, रोटी पर उसका रंग चढ़ जाता है। देखो आप सालन में रोटी डबोते हैं तो उसका रंग रोटी पर लग जाता है, तो इदाम वो चीज है जिसमें रोटी को डबो कर खाया जाता है और रोटी को उसका रंग लग जाता है और नीज इससे खाने की लज्जत बढ़ जाती है। अगर वैसे रोटी खाएगा उसमें वो लज्जत नहीं, लेकिन सालन के साथ खाएगा तो रोटी की लज्जत बढ़ जाएगी। तो इदाम अरबी जुबान में उस चीज को कहते हैं जिसे रोटी के साथ खाया जाता है, रोटी पर उसका रंग लगता है और उसकी वजह से खाने की लज्जत बढ़ जाती है। अब एक शख्स है वो गोश्त के साथ रोटी खाता है, गोश्त है, शोरबा सालन वगैरह नहीं है, सिर्फ गोश्त है, तो क्या यह हानिस होगा या नहीं? या इसी तरह एक शख्स अंडे के साथ रोटी खाता है तो क्या यह हानिस होगा या नहीं? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह हानिस हो जाएगा क्योंकि ये चीजें रोटी के ताबे हो गई और इनकी वजह से खाने की लज्जत हो गई, लिहाजा जब ये रोटी के ताबे हो गई तो ये इदाम हुआ, जब ये इदाम हुआ तो इसके खाने से वो हानिस हो जाएगा। जबकि शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, ये गोश्त या अंडा रोटी के साथ खाने से हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं काला इमाम मोहम्मद रहमला जामे सगीर में फरमाते हैं वलव हलफ ला यतदीमु, अगर एक शख्स ने कसम उठाई कि वो वल्लाह इदाम नहीं खाएगा, फकुल्लु शैइन इस्तुबिगा बिही इदामुन, तो हर ऐसी चीज उस्तुबिगा बिही कि जिसके साथ रोटी को रंगा जाता है, इदामुन वो इदाम है। हर वो चीज जिसके साथ रोटी को रंगा जाता है यानी रोटी पर उसका रंग लग जाता है, फकुल्लु शैइन इस्तुबिगा बिही इदामुन, तो हर ऐसी चीज जिसके साथ रोटी को रंगा जाता है वो इदाम है, वह शिवा उलैस भी इदामिन, और भुना हुआ गोश्त जो है वो इदाम नहीं है। भाई गुज़श्ता सबक में आया था शिवा का माना है भुनी हुई चीज, लेकिन अब इसका इतलाक ज्यादातर भुने हुए गोश्त पर होता है, तो यहां भी शिवा से क्या मुराद है? भुना हुआ गोश्त। तो कहते हैं वह शिवा उलई सभी इदामिन, और भुना हुआ गोश्त इदाम नहीं है, इदाम नहीं है, वल मिल हो इदामुन, और नमक जो है वो इदाम है। नमक जो है वो इदाम है। देखो एक है बगैर नमक के रोटी और एक है नमक के साथ रोटी। भाई आजकल तो अल्लाह की इतनी नेमतें हो गई, तरह तरह के खाने आ गए, लेकिन कदीम जमाने में तो गुर्बत का जमाना था, हत्ता के लोग नमक के साथ बाज़ औक़ात रोटी खाते थे। भाई आज भी हो सकता है बाज़ जगह हो, लेकिन बहुत ही कलील होगा, लेकिन कदीम जमाने में तो ये आम था। भाई ये सालन वगैरह या कोई और चीज मिलना, ये तो किसी किसी को ये चीजें नसीब होती थी, तो रोटी के नमक के साथ खा लेते थे। और याद रखो ये नमक भी इदाम है। आपको आगे चलकर बताएंगे कि इदाम उसको कहेंगे कि जिसके साथ रोटी रंगी जाए और जिसको अकेला न खाया जाता हो। अगर एक चीज को अकेला खाया जाता है मालूम है वो रोटी के ताबिया नहीं, क्योंकि सालन में जब रोटी रंगी गई, सालन में रोटी को डुबोया तो रोटी को सालन का रंग लग गया, तो देखो सालन जो है वो रोटी के ताबिया हो गया। तो ताबिया होना दो तरह है, एक है हकीकतन ताबिया होना और एक है हुक्मन ताबिया होना। हकीकतन ताबिया यह है कि वो चीज रोटी के साथ मिल जाए, उसका रंग वगैरह रोटी को लग जाए, तो ये हकीकतन रोटी के ताबिया हो गई। और हुक्मन ताबिया यह है कि उस चीज को अकेला न खाया जाता हो। अगर अकेला खाया जाता है मालूम हुआ हुक्म यह लगाया जाएगा कि यह रोटी के ताबिया नहीं है। तो हकीकतन ताबिया क्या कि रोटी के साथ मिल जाए, रोटी को उसका रंग लग जाए। और हुक्मन ताबिया क्या कि अकेला न खाया जाता हो। अगर अकेला खाया जाता है फिर तो हुक्म लगाया जाएगा ये रोटी के ताबिया नहीं है। तो भुना हुआ गोश्त जो है वो तो अकेला भी खाया जाता है, तो लिहाजा भुने हुए गोश्त के साथ रोटी खाएगा तो वो रोटी के हकीकत में भी ताबिया न बना, क्योंकि रोटी पर उसका रंग नहीं चढ़ा। और नीज वो हुक्मन भी रोटी के ताबिया नहीं है, क्योंकि उसको अकेला भी खाया जाता है। तो लिहाजा इमाम साहब के नजदीक भुने हुए गोश्त के साथ रोटी खाएगा तो हानिस नहीं होगा। लेकिन नमक जो है ये इदाम है। आप कहेंगे भाई इसका तो रंग रोटी पर नहीं चढ़ता, तो जवाब ये कि जब रोटी के साथ नमक को लगाकर आप मुंह में चबाएंगे तो वो लोआब के साथ मिलकर रोटी को लग जाएगा। रोटी के वो साथ मिल गया, रोटी के साथ मिल गया, देखो रोटी के ताबे हो गया। तो हकीकतन ये रोटी के ताबे हुआ। और नीज ये हुक्मन भी रोटी के ताबे है, क्योंकि खाली नमक को नहीं खाया जाता भाई, खाली नमक को नहीं खाया जाता भाई। तो कहते हैं वह शिवा उलई सभी ईदामिन वल मिल हो ईदामुन, और भुना हुआ गोश्त वो ईदाम नहीं है और नमक जो है वो ईदाम है। वहां दाइंद अभी हनीफत व अभी यूसुफ रहिमहुमल्ला, और ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह कुल्लु मा युकलु मअल खुब्ज गालिबन फहुवा ईदामुन। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं हर ऐसी चीज जिसको ज्यादातर रोटी के साथ खाया जाता है फहुवा ईदाम, तो वो ईदाम है। वह हुआ रिवायत अन अबी यूसुफ रहमल्ला, और यही एक रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला से भी है कि जिस चीज को भी रोटी के साथ ज्यादातर खाया जाता है वो ईदाम है। लिअन अल ईदाम मिन अल मुआदमति वही अल मुआफकतु, इमाम मोहम्मद रहमल्ला की दलील चल रही है। कहते हैं लिअन अल ईदाम मिन अल मुआदमति, इसलिए क्योंकि ईदाम का लफ्ज मुआदमत से माखूज है। ईदाम का लफ्ज मुआदमत से मुश्तक है। वही अल मुआफकतु, और मुआदमत जो है मुआफकत को कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज के मुआफिक हो जाए, एक चीज दूसरी चीज के मुआफिक हो जाए। वह कुल्लु मा युकलु माल खुब्ज़ी मुआफिकुन लहू, और जो चीज भी रोटी के साथ खाई जाती है वो रोटी के साथ मुआफिक है, तो वह ईदाम है भाई। तो कहते हैं वह कुल्लु मा युकलु माल खुब्ज़ी मुआफिकुन लहू, और जो चीज भी रोटी के साथ खाई जाती है वो रोटी के मुआफिक है। कल लहमी वल बैज़ी व नहवुहू, जैसे कि गोश्त है और अंडा है। व नहवुहू, और इस जैसी चीजें हैं। बात समझ में आ गई। तो इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं ईदाम मुआदमत से है, यानी ईदाम मुआदमत से मुश्तक है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि मुआदमत ये तो बाबे मुफाला है और ये तो सुलासी मजीद फी है, सुलासी मजीद फी है, और मुजर्रद जो है वो तो सुलासी मजीद फी से मुश्तक नहीं होता भाई, बल्कि सुलासी मजीद फी मुजर्रद से मुश्तक होता है। सुलासी मुजर्रद से क्या बनता है? सुलासी मजीद फी, तवज्जो है। तो लिहाजा ये कहना कि ईदाम मुआदमत से मुश्तक है ये तो बात सही नहीं। तो जवाब ये कि नहीं, बाज औकात सुलासी मजीद फी जो है वो मुजर्रद के मुकाबले में ज्यादा मशहूर होता है, तो उस मौके पर इसी तरह कहा जाता है कि ये इस बाब से मुश्तक है, ये सुलासी मजीद फी से मुश्तक है। भाई आगे देखिए, वलहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील ये है, अन्नल ईदाम मा युकलु तबअन व तबईयतु फिल इख्तिलाति हकीकतन। शेखैन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं, अन्नल ईदाम मा युकलु तबअन, तबअन में ता पर भी जबर पड़े और बा पर भी, तबअन तबा बमाने ताबिया के है भाई, और ये मुफरत के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी। शेखैन रहमहुमल्लाह की दलील यह है कि अनल इदाम मा युकलु तबअन, कि इदाम वो है जिसको ताबिया करके खाया जाए, व तबईयतु फिल इख्तिलाति हकीकतन, और ताबिया होना ये मिल जाने में है हकीकतन, हकीकत के एतबार से। ताबिया होना हकीकत में किसे कहते हैं, जो एक चीज के साथ मिल जाए, जैसे आपने रोटी को सालन में डुबोया तो सालन का रंग रोटी पर लग गया, तो सालन रोटी के साथ मिल गया, इसको कहते हैं हकीकतन ताबे होना, ये सालन हकीकतन रोटी के ताबे हो गया है, उसके साथ मिल गया है। तो इख्तिलात का क्या माना, मिल जाना, तो ये माना है व तबईयतु फिल इख्तिलाती, और ताबे होना मिल जाने में होता है हकीकतन, हकीकत के एतबार से। लियकून कायमन बिही, ताकि ये उसके साथ कायम हो जाए, यानी उसकी सिफत बन जाए, रोटी जब उसके साथ रंगी गई तो ये सालन रोटी की सिफत बन गया, तो कहते हैं लियकून कायमन बिही, ताकि ये ईदाम उस रोटी के साथ कायम हो जाए। वफी अल्लाह युकला अलल इनफिराद हुक्मन, और ताबिया होना, एक तो ताबिया होना हकीकतन है, वो किस चीज में है, इख्तिलात में है, मिल जाने में है, और एक हुक्मन ताबिया होना है, और वो इसमें है कि इसको अकेला ना खाया जाता हो। वफी अल्लाह युकला अलल इनफिरादी हुक्मन, और ताबे होना इस बात में है, अल्लाह युकला अलल इनफिरादी, कि उस चीज को अलग यानी अलहदा ना खाया जाता हो, हुक्मन हुक्म के एतबार से। यह है ताबे होना हुक्म के एतबार से, एक ताबे होना है हकीकत के एतबार से, और वो किस में है, मिल जाने में, और एक ताबे होना है हुक्म के एतबार से, और वो इसमें है कि उस चीज को अकेला अलहदा न खाया जाता हो। तो कहते हैं वफी अल्लाह युकला अलल इनफिराद हुक्मन, और ताबे होना जो है हुक्म के एतबार से इस चीज में है कि उस चीज को अलहदा न खाया जाता हो, यानी ये हुक्म के एतबार से ताबे होना है। व तमाम उल मुआफकती फिल इम्तिजाजी ऐजन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ईदाम मुआदमत से है, और मुआदमत का माना मुआफकत है, तो जो चीज भी रोटी के साथ खाई जाएगी वो रोटी के मुआफिक हो गई तो वो ईदाम है, उसका जवाब दे रहे हैं। व तमाम उल मुआफकती फिल इम्तिजाजी ऐजन, और जब सालन रोटी के साथ लग जाता है तो वो उसकी रोटी के साथ पूरी मुआफकत आ जाती है। आपने भी कहा कि ईदाम किससे है, मुआदमत से है, और वो है मुआफिक होना, और गोश्त को रोटी के साथ खाया जाता है तो रोटी के मुआफिक है। हम कहते हैं कामिल तौर पर मुआफकत मिल जाने में है जी। कामिल मुआफकत रोटी के साथ खाने में नहीं है, बल्कि रोटी के साथ मिल जाना है, सालन रोटी के साथ मिल जाए तो इसमें कामिल मुआफकत आ गई। तो कहते हैं वह तमाम उल मुआफकती फिल इम्तिजाजी ऐजन, और पूरी मुआफकत जो है फिल इम्तिजाजी ऐजन, ये मिल जाने में भी है। वलखल वगैरह मिनल माएआति ला युकलु वहदहा, वलखल वगैरह मिनल माएआति, और सिरका जो है और इसके अलावा और जो बहने वाली चीजें हैं, माएआ कहते हैं बहने वाली चीज, कहते हैं वलखल वगैरह मिनल माएआति, और सिरका और इसके अलावा और जो बहने वाली चीजें हैं यानी शोरबा वगैरह, ला युकलु वहदहा, इनको अकेला नहीं खाया जाता, अलहदा नहीं खाया जाता, बल युशरबू, बल्कि इनको पिया जाता है। वल मिल्हु ला युकलु बिनफिरादिही आदतन, और नमक जो है उसको आदतन अकेला नहीं खाया जाता। वली अन्नहु यजूब, और इसलिए क्योंकि नमक जो है वो पिघल जाता है, फयकूनु तबअन, तो ये ताबिया होगा भाई। बेखिलाफ लहमी व मायुजाही ही, बखिलाफ गोश्त के और जो इसके मुशाबे और चीजें हैं यानी अंडा पनीर वगैरह, लिअन्नहु युकलु वहदहु, इसलिए क्योंकि उनको अकेला भी खाया जाता है, इल्ला अय्यनवियहु, मगर यह कि इनकी वो नीयत कर ले जी। इस आदमी ने कहा वल्ला मैं ईदाम नहीं खाऊंगा, तो शेखैन रहमहुमल्लाह के मजहब के मुताबिक गोश्त और अंडा इसमें दाखिल नहीं, लेकिन अगर वो गोश्त और अंडे की नीयत भी कर लेता है या दोनों में से एक की नीयत कर लेता है तो वो अपने ऊपर सख्ती को बढ़ा रहा है। पहले उसको सिर्फ शोरबे सिरके वगैरह से बचना जरूरी था, अब इसको गोश्त और अंडे से भी बचना पड़ेगा वरना हानिस हो जाएगा, तो यह अपने ऊपर सख्ती कर रहा है तो इस सूरत में उसकी तस्दीक की जाएगी। तो कहते हैं बेखिलाफ लहमी व मायूजाही ली अन्नहू युकलु वहदहू, बेखिलाफ गोश्त और इसके मुशाबे चीजें क्योंकि उनको अकेला खाया जाता है, इल्ला अय्यन वियहू मगर यह कि यह उसकी नीयत कर ले, लिमा फीही मिनत तशदीदी इसलिए क्योंकि इसके अंदर सख्ती करना है यानी अपने ऊपर कसम के मामले में सख्ती कर रहा है, अब इन सब चीजों से फिर बचना पड़ेगा क्योंकि इसने इनकी नीयत की है। वल इनबू वल बित्तीख लैसा बिइदामिन, और अंगूर और बित्तीख जो है, मैंने बताया था बित्तीख तरबूज और खरबूजे दोनों को कहते हैं अरबी जुबान में, तो कहते हैं वल इनबू वल बित्तीख लैसा बिइदामिन, और अंगूर और तरबूज और खरबूजा जो है लैसा बिइदामिन ये दोनों इदाम नहीं हैं क्योंकि इनको अकेला खाया जाता है। हुआ सहीह यही कौल सहीह है भाई। आगे देखिए वह इदा हलफला यतगद्दा फलगदा उल अक्लु मिन तुलू अल फजरी इला जोहर वल अशा उमिन सोलाते जोहरी इला निसफी लैल। सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम खा ली कि वल्लाह मैं गदा नहीं खाऊंगा या वल्लाह मैं आशा नहीं खाऊंगा या वल्लाह मैं सहूर नहीं खाऊंगा तो फिर किस सूरत में यह हानिस होगा, तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि गदा जो है वो खाना है जो तुलुए फजर से लेकर जोहर के बीच में किसी वक्त खाया जाए। वैसे तो अरब की आदत यह थी कि दोपहर से पहले पहले वो खाना खा लेते थे 8-9 बजे तक 10 बजे तक भाई, लेकिन गदा अरबी जुबान में उस खाने को कहते हैं जो तुलुए फजर से लेकर जोहर तक के वक्त के बीच में खाया जाए जी। इसको गदा कहते हैं। तो इस वक्त में अगर ये कोई खाना खा लेगा तो ये हानिस हो जाएगा। और अगर एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह मैं आशा नहीं खाऊंगा, आशा आइन के फतहा के साथ, एक है ईशा आइन के कसरा के साथ, वो वक्त को कहते हैं, और आशा आइन के फतहा के साथ ये खाने को कहते हैं, तो आशा वो खाना है जो जोहर से लेकर निसफे लैल तक खाया जाए, जोहर के वक्त से लेकर आधी रात तक जो खाना खाया जाए इस वक्त के दौरान में किसी भी वक्त, उसको आशा कहते हैं। तो ये इस वक्त कोई खाना खा लेगा तो हानिस हो जाएगा। और इसी तरह अगर एक शख्स ने कहा वल्लाह मैं सहूर नहीं खाऊंगा, सहूर भाई ये वही है ये जिसको उर्दू में हम सहरी कहते हैं कि मैं सहरी नहीं खाऊंगा, रोजा रखने के लिए सहरी खाई जाती है, तो एक शख्स कहता है वल्लाह मैं सहूर नहीं खाऊंगा, तो कहते हैं सहूर वो है जो निसफे लैल से लेकर तुलुए फजर तक खाया जाए, यानी तुलुए फजर से पहले पहले निसफे लैल से लेकर तुलुए फजर तक जो खाना खाया जाए उसको सहूर कहते हैं। तो इस वक्त में अगर इसने कोई खाना खा लिया तो यह हानिस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं वह ईदा हलफ ला यतगद्दा, और अगर एक शख्स ने कसम उठा ली कि वो गदा नहीं करेगा, फल गदा उल अक्लु मिन तुलुए फजरी इला जोहरी, तो गदा जो है वो खाना है तुलुए फजर से लेकर जोहर तक, वल अशा उमिन सोलात जोहरी इला निसफी लैली, और अशा जो है सोलात जोहर से लेकर निसफे लैल तक है, यह खाना आशा कहलाता है, ले अन्ना माबाद जवाली युसम्मा ईशान, वजह जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहा आशा वो खाना है जो जोहर से लेकर निसफे लैल तक खाया जाता है, उसकी क्या दलील है, अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ले अन्ना माबाद जवाली युसम्मा ईशान, इसलिए क्योंकि जवाल के बाद का जो वक्त है युसम्मा ईशान, इसको अरबी जुबान में ईशा कहते हैं, व लिहाजा युसम्मा जोहर इहदा सलातैल ईशा इफिल हदीस, और इसी वजह से जोहर को जो है ईशा की दो नमाजों में से एक नमाज करार दिया गया है, फिल हदीस हदीस में बे हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें ईशा की दो नमाजों में से एक पढ़ाई, ईशा की दो नमाजों में से एक नमाज पढ़ाई, यानी जोहर या ईशा की, जोहर की भी चार रकात है ईशा की भी चार रकात, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईशा की दो नमाजों में से एक नमाज हमें पढ़ाई, या तो जोहर पढ़ाई या ईशा पढ़ाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भूल कर दो रकतों पर ही सलाम फेर दिया। बात समझ में आ गई। हदीस में मशहूर वाकया जिक्र होता है, फिर सहाबा ने बाज ने कहा या रसूल अल्लाह क्या नमाज मुख्तसर कर दी गई है या आप भूल गए हैं, तो हुजूर ने फरमाया इनमें से कोई बात नहीं है। फिर दूसरे सहाबा ने बताया कि आपने दो रकात पर सलाम फेरा है, तो हुजूर खड़े हुए और नमाज मुकम्मल करवाई। भाई बात समझ में आ गई। और ये वो जमाना था जब अभी नमाज के अंदर कलाम की मुमानअत का हुक्म नहीं आया था। अब अगर नमाज में कोई कलाम करेगा तो अब उसकी नमाज ही टूट जाएगी। भाई तो कहते हैं वलिहादा युसम्मा ज़ुहरु, और इसी वजह से ज़ुहर को कहा गया है इहदा सलात अल इशाई, इशा की दो नमाजों में से एक नमाज। फिल हदीस, हदीस के अंदर व सहूर मिन निसफ लैल इला तुलू इल फजरी, और सहूर जो है वो निसफ लैल से लेकर तुलू फजर तक होता है। ले अनहू माखूज मिन सहरी, इसलिए क्योंकि सहूर जो है सहर से माखूज है। वयुतलकु अला मा यकरुबु मिनहू, और सहूर का इतलाक होता है जो इस सहर के करीब हो। सहर भी यही वक्त है, निसफ लैल के बाद से लेकर तुलुए फजर का जो वक्त है ये सहर है। तो इसमें ये इसके करीब जो खाना खाया जाए वो सहूर है। भाई तो कहते हैं वयुतलकु अला मा यकरुबु मिनहु, और सहूर का इतलाक होता है उस चीज पर जो इस सहर के करीब हो। सुम्मल गदाउ वल अशाउ मा युक्सदु बिही शिबाउ, शिबा भाई शबिया यशबाउ शिबान का माना है सेर हो जाना, पेट का भर जाना। भाई याद रखो गदा और आशा वो खाना है जिससे इंसान पेट भर लेता है, खूब सेर हो जाता है। तो गदा और आशा उस खाने में सेर हुआ जाता है, लिहाजा अगर किसी ने एक दो लुकमे खा लिए या तीन लुकमे खा लिए तो इस सूरत में ये हानिस नहीं होगा, क्योंकि दो तीन लुकमे खाने को गदा या आशा नहीं कहते। हत्ता कि अगर कोई दो तीन लुकमे खा भी ले फिर भी किसी दूसरे को कहता है मैंने आज गदा नहीं किया या आज मैंने आशा नहीं किया। भाई कहते हैं सुम्मल गदा उवल आशा उमा युक्सदु बिही शिबाउ आदतन, कि फिर गदा और आशा जो है वो खाना है जिसके जरिए पेट भरने का इरादा किया जाए आदतन आमतौर पर। वयुअतबरु आदतु अहलि कुल्ली बल्दतिन फी हक़हिम, और एतबार किया जाएगा हर शहर वालों की आदत का उनके हक में, एतबार किया जाएगा हर शहर वालों की आदत का उनके हक में। मसलन एक आदमी ने कहा वल्लाह मैं आशा नहीं खाऊंगा, और इस शहर में और इस इलाके में रिवाज है कि आशा के अंदर गोश्त खाया जाता है जी। तो अब ये गोश्त खाने से ही हानिस होगा, अगर इसने रोटी खा ली तो हानिस नहीं। या एक शहर में रिवाज है कि गदा में दूध पिया जाता है जी। तो फिर दूध पीने से ही ये हानिस होगा, अगर कोई और चीज खाएगा तो हानिस नहीं होगा। भाई तो इसमें उर्फ को भी देखा जाएगा। तो ये माना है वह युअतबरु आदतु अहली कुल्ली बल्दतिन फी हक़हिम, और मुअतबर है हर शहर वालों की आदत उनके हक में। वह युश्तरतु अन यकूना अक्सरा मिन निस्फ शिबाई, और शर्त यह है कि गदा और आशा निस्फ शिबा से बढ़कर हों, निसफ पेट भरने से बढ़कर हों, क्योंकि इससे कम खाएगा तो इसको गदा या आशा नहीं कहते। भाई दो चार लुकमे कोई खा भी ले तो कहता है मैंने गदा नहीं खाया। भाई तो यह माना है वह युश्तरतु अन यकूना अक्सरा मिन निस्फ शिबाई, और गदा और आशा के अंदर शर्त है कि वह निस्फ पेट भरने से ज्यादा हो, निसफ सेर होने से ज्यादा हो। वमन काला इन लबिस तु अव अकल तु अव शरीब तु फअब्दी हुर्रुन, व काला अनै तु शै अंदू न शै इन लम युदयन फिल कजा व गैरिही। सूरत मसला ये, एक आदमी ने कसम उठाई कि इन लबिस तु, अगर मैंने पहना तो मेरा गुलाम आजाद है। मफूल को जिक्र ही नहीं किया सिरे से, इन लबिस तु, अगर मैंने पहना तो मेरा गुलाम आजाद है। कहना तो क्या चाहिए था, इन लबिस तु सौबन, अगर मैंने कोई कपड़ा पहना तो मेरा गुलाम आजाद है, लेकिन इसने मफूल को हजफ कर दिया, जिक्र ही नहीं किया। या इसी तरह कहा इन अकल तु फअब्दी हुर्रुन, अगर मैंने खाया तो मेरा गुलाम आजाद है, मफूल को जिक्र ही नहीं किया। कहना तो यह चाहिए था इन अकल तु तआमन फअब्दी हुर्रुन, या इसी तरह कोई और मफूल जिक्र करता, लेकिन इसने कोई मफूल जिक्र नहीं किया। या इसी तरह कहता है इन शरीब तू, इन शरीब तू फअब्दी हुर्रुन, अगर मैंने कोई चीज पी तो मेरा गुलाम आजाद है। तो देखो मफूल को जिक्र नहीं किया, और फिर कसम खाने के बाद कहता है कि भाई मैंने तो फुला कपड़े की नीयत की थी, या मैंने फुला खाने की नीयत की थी, या मैंने फुला मशरूब की नीयत की थी। तो कहते हैं ना इसकी कजा अन तस्दीक की जाएगी न दियानतन, यानी उसके और अल्लाह का मामला है, अगर वो ये बयान करे भी तो तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर काजी के पास भी यह चला जाए तो काजी भी इसकी तस्दीक नहीं करेगा। क्या वजह? क्या कहते हैं वजह यह कि इसने मफूल जिक्र ही नहीं किया। अगर मफूल जिक्र करता तो फिर तख्सीस हो सकती थी। अगर वो सौब जिक्र करता, और सौब तो दुनिया के हर कपड़े को कहते हैं, लेकिन जिक्र तो कर दिया इसने, तो कोई खास कपड़े की नियत करना भी सही था, क्योंकि वो भी तो सौब ही है भाई। तो आम के अंदर खास की नियत की जा सकती है। सौब का लफ्ज क्या है? आम, हर कपड़े पर बोला जाता है, लेकिन इससे वो एक खास कपड़े की नियत कर लेता है तो यह नियत सही है, क्योंकि वो खास भी तो कपड़ा ही है भाई। तो आम के अंदर खास की नियत सही है, लेकिन इसने तो मफूल जिक्र ही नहीं किया। तो मफूल जो यहां साबित हो रहा है वो मुक्तजा के तौर पर कलाम इसका तकाजा कर रहा है, और मुक्तजा जो साबित होता है, याद रखो, वो जरूरत के बकदर साबित होता है, उसमें उमूम नहीं होता। मुक्तजा जो साबित होता है वो जरूरत के बकदर साबित होता है। तो यहां इन लबिस्तु, अगर मैंने पहना, उसे तो मफूल जिक्र नहीं किया तो मफूल मानना तो पड़ेगा जी। लेकिन यह मफूल हमने इक्तिजान माना है जी। इसके बगैर तो इसका कलाम सही ही नहीं होता था। तो जो मुक्तजा होता है उसमें उमूम नहीं होता, और वो जरूरत की वजह से हमने साबित किया है। और आपने पढ़ा है अजरूरी यू यतकद्दरु बिकद्री जरूरती, कि जो चीज जरूरतन साबित हो वह जरूरत के बकदर ही साबित होती है, लिहाजा उसकी तख्सीस की नीयत सही नहीं जी। लिहाजा उसकी तख्सीस की नीयत सही नहीं, ये उस सूरत में जब उसने मफूल को सिरे से जिक्र ही नहीं किया। और अगर वो मफूल जिक्र कर देता है, इन लबिस्तु सौबन, या इन अकलतु तआमन, या इन शरिबतु मशरूबन, तो फिर अब इसमें वो किसी खास की नीयत करना चाहे तो फिर उसकी नीयत सही है भाई। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इन लबिस्तु औ अकलतु औ शरिबतु फअब्दी हुर्रुन, कि अगर मैंने पहना या मैंने खाया या मैंने पिया तो मेरा गुलाम आजाद है। वकाला, और वो कहता है अनैतु शैअन दून शैइन, कि मैंने एक चीज का इरादा किया है न कि दूसरी चीज का। लम युदय्यन, तो उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। फिल कजा वगैरही, न तो कजा के अंदर और न गैर कजा में, यानी दयानतन भी उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। ले अन्न नीयत इन्नमा तसिहु फिल मलफूजी, इसलिए क्योंकि नीयत जो है वो मलफूज में सही होती है, और यहां तो मफूल मलफूज ही नहीं है। कहते हैं ले अन्न नीयत इन्नमा तसिहु फिल मलफूजी, इसलिए क्योंकि नीयत जो है मलफूज में सही होती है। वसौब वमा युजाही ही गैरु मजकूर इन तनसीसन, और कपड़ा और जो इसके मुशाबे चीजें हैं, गैरु मजकूर इन, वो मजकूर नहीं है। तनसीसन सराहत करते हुए, तनसीस भाई स्वाद के साथ है, नस सयुनसिसु तनसीस का माना है किसी चीज की तसरीह करना, सराहत करना, और कपड़ा वगैरह तो यहां बतौर सराहत के मजकूर नहीं है। क्यों? कहते हैं वसौबू वमा युजाही ही, और कपड़ा और इसके मुशाबे चीजें जो हैं, यानी ताम और शराब वगैरह, गैरु मजकूर इन तनसीसन, ये तसरीह के एतबार से मजकूर नहीं है। तो ये चीजें मजकूर नहीं हैं, अलबत्ता इक्तिजान ये चीजें साबित होंगी। वल मुक्तजा ला उमूम लहू, और मुक्तजा जो होता है उसमें उमूम नहीं होता। फलगत नीयत तख्सीस फी ही, लिहाजा इसके अंदर इसकी तख्सीस की नीयत लग्व होगी, उसका एतबार नहीं होगा। जो भी ये कपड़ा पहन ले, जो भी मशरूब ये पी ले, या जो भी खाना ये खा ले, ये हानिस हो जाएगा भाई। तो ये माना है फलगत नीयत तख्सीस फी ही, तो इसके अंदर तख्सीस की नीयत लग्व है, यानी उसका कोई एतबार नहीं। व इन काला इन लबिस तु सौबन औ अकल तु तआमन औ शरीब तु शराबन लम युदय्यन फिल कजा खासतन, हां इसके बजाय अगर इसने मफूल जिक्र कर दिया इन लबिस तु सौबन या इन अकल तु तआमन या इन शरीब तु शराबन, तो फिर इस सूरत में वो कहता है मैंने तो फला चीज की नीयत की थी, तो फिर इसकी तस्दीक की जाएगी, लेकिन दयानतन, कजाअन नहीं, कजाअन नहीं, दयानतन तस्दीक करेंगे लेकिन कजाअन नहीं। वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है, यह अपने लिए आसानी तलब कर रहा है। इसने तो कहा है इन लबिस्तु सौबन, कि मैंने जो भी कपड़ा पहना तो मेरा गुलाम आजाद है, तो अब यह अपने लिए आसानी चाहता है कि सिर्फ फलां कपड़ा पहनूंगा तो हानिस होऊंगा, कोई और पहनूंगा तो हानिस नहीं होऊंगा, यह अपने लिए नरमी चाहता है, लिहाजा कजाअन इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। वह इन काला इन लबिस तु सौबन, और अगर इसने कहा कि अगर मैंने कोई कपड़ा पहना और अकल तो तआमन, या अगर मैंने कोई खाना खाया और शरीब तो शराबन, या मैंने कोई मशरूब पिया, लम युदयन फिल कजा इखासतन, तो खास तौर पर कजान उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, यानी दयानतन तस्दीक की जाएगी। भाई क्यों कजान क्यों नहीं तस्दीक करेंगे? कहते हैं लिअन नहु नकेरा तुनफी महल शर्त फताउमो, इसलिए क्योंकि यह नकेरा है जो शर्त के महल में आया है, फताउमो तो यह आम होगा। भाई आप पढ़ चुके हैं नकेरा सियाक नफी में आए तो उमूम का फायदा देता है, और नकेरा सियाके इस बात में आए तो खुसूस का फायदा देता है। फिर सुने, नकेरा सियाके नफी में आए तो उमूम का फायदा देता है। मसलन एक आदमी कहता है मा जाअनी तालिबुन, मेरे पास कोई तालिब इलम नहीं आया। तो अब देखो तालिबुन नकेरा है लेकिन यह नफी के तहत आ रहा है, मा जाअनी तालिबुन, तो इसने उमूम का फायदा दिया कि कोई एक भी तालिब इलम मेरे पास नहीं आया, मा जाअनी तालिबुन। तो ये नकेरा तहता नफी जो है वो उमूम का फायदा दे रहा है, हर हर तालिब के आने की नफी हो गई। और नकेरा सियाके इस बात में आए तो ये खुसूस का फायदा देता है। मसलन एक आदमी कहता है जाअनी तालिबुन, मेरे पास एक तालिब इलम आया, तो तालिबुन ये इस बात के मकाम में आ रहा है, यहां नफी है ही नहीं जुमले में। जाअनी तालिबुन, मेरे पास तालिब आया, तो माना है एक तालिब आया, इसने खुसूस का फायदा दिया, उमूम का फायदा नहीं दिया। तो मालूम हुआ नकेरा सियाके इस बात में आए तो वो खुसूस का फायदा देता है, और नकेरा सियाके नफी में आए तो वो उमूम का फायदा देता है। तो यहां पर भी इसी तरह है, नकेरा जो है सियाके नफी में है लिहाजा उमूम का फायदा देगा। नकेरा क्यों फायदा देगा? क्यों? क्योंकि ये सियाके नफी में है। देखो क्या कहा है उसने कि इन लबिस्तु सौबन, अगर मैंने कोई कपड़ा पहना तो मेरा गुलाम आजाद है। नकेरा सौबन, नकेरा आ रहा है और तख्ता नफी है, इस पर इश्काल होता है नफी किधर है, नफी का तो हर्फ ही यहां नहीं है। इन लबिस्तु सौबन, अगर मैंने कपड़ा पहना, तो जवाब यह कि मुराद नफी ही है, यानी मैं कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा, मुराद नफी ही है, वो कपड़ा पहनने से अपने आप को रोक रहा है। तो ये सौब गोया सियाके नफी में आ रहा है, तो ये उमूम का फायदा देगा, लिहाजा कोई भी ये कपड़ा पहनेगा तो हानिस हो जाएगा। ये माना है लिअन्नहु नकिरतुन फी महल्लि शर्ति फतउम्मु, इसलिए क्योंकि ये नकेरा है शर्त के महल में, शर्त के मकाम में, यानी शर्त के अंदर वो नकेरा जिक्र कर रहा है, फतउम्मु तो ये आम होगा। फ़अमिलत नीयतु तख़सीसी फ़ीहि, तो तख़सीस की नीयत इसके अंदर अमल करेगी। इल्ला अन्नहु खिलाफु ज़ाहिरी, मगर यह कि जाहिर के खिलाफ है, जाहिर तो यही है, हर कपड़ा पहनने से हानिस हो गई। तो जब अगर यह कह रहा है मैंने खास कपड़े का इरादा किया था तो उसका यह दावा जाहिर के खिलाफ है, लिहाजा कज़ान इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु खिलाफु ज़ाहिरी, मगर यह कि जो उसने तख़सीस की नीयत की है यह जाहिर के खिलाफ है, फला युदय्यनु फिल क़ज़ाई, तो कजा के अंदर इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। आगे देखिए, काल व मन हलफ ला यशरबु मिन दिजलता फशरिब मिन्हा बि इना इन लम यहनस हत्ता यकरअ मिन्हा करअन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। सूरत है मसला ये, एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं दिजला से नहीं पीऊंगा। दिजला ये इराक का कोई दरिया है, भाई इराक का कोई दरिया है, वैसे बतौर मिसाल के उस दरिया को जिक्र कर दिया कि कोई भी दरिया हो। एक शख्स कहता है वल्लाह मैं इस दरिया से नहीं पीऊंगा। तवज्जो से सुनना भाई, एक आगे सूरत जिक्र करेंगे कि वो पानी का लफ्ज भी जिक्र करता है, वल्लाह मैं इस दरिया के पानी में से नहीं पीऊंगा, और एक कहता है वल्लाह मैं इस दरिया से नहीं पीऊंगा। दोनों में फर्क है भाई, चुनांचे दरिया से पीना एक इसका हकीकी माना है और एक मजाजी माना है। हकीकी माना कि वो दरिया के पानी को मुंह लगाकर पिए बराह रास्त, भाई ये दरिया से पी रहा है, तो ये है इसका हकीकी माना, दरिया से पीना। और एक इसका मजाजी माना है कि किसी बर्तन वगैरह में दरिया का पानी लेकर पिया जाए, बर्तन में या चुल्लू में ले लिया और पानी पी लिया, तो ये भी दरिया के पानी से पी रहा है, लेकिन हकीकतन नहीं, मजाजन भाई, क्योंकि हकीकतन तो ये चुल्लू से पी रहा है या बर्तन से पी रहा है। तो दरिया से पीना इसका एक हकीकी माना है कि बराह रास्त दरिया के पानी को मुंह लगाकर पिए, बगैर किसी बर्तन में उठाए दरिया को ही मुंह लगाया और पानी पी रहा है, यह है दरिया से पीना हकीकतन। और एक इसका मजाजी माना है कि चुल्लू के जरिए दरिया का पानी पिए या किसी बर्तन में लेकर दरिया का पानी पिए, तो यह भी दरिया से पी रहा है लेकिन हकीकतन नहीं, मजाजन भाई, हकीकतन तो इस वक्त यह चुल्लू से पी रहा है या बर्तन से पी रहा है, दरिया से तो नहीं पी रहा। तो बर्तन में वो दरिया का पानी पिए या चुल्लू से दरिया का पानी पिए, तो ये मजाजन दरिया से पी रहा है, हकीकतन दरिया से नहीं पी रहा। बल्कि अब मुझे आप बताइए कि दरिया से पीना ज्यादातर लोगों में क्या राइज है, दरिया से मुंह लगाकर पीते हैं या बर्तन वगैरह में दरिया का पानी लेकर पीते हैं? बर्तन वगैरह में। तो मालूम हुआ दरिया से पीना यह हकीकी माना भी मुस्तामल है, क्योंकि बाज लोग जो दरिया के पास रहने वाले होते हैं वो अमूमन दरिया से ही मुंह लगाकर पी लेते हैं, मालूम हुआ यह हकीकत मुस्तामला है। लेकिन यहां मजाजी माना जो है वो ज्यादा मुतारफ है कि लोग ज्यादातर बर्तन वगैरह में दरिया का पानी पीते हैं, तो एक तरफ है हकीकत मुस्तामला अगरचे वो कलील है, और दूसरी तरफ है मजाज मुतआरफ जो लोगों में राइज है, मशहूर है। और आप पढ़ चुके हैं कि इमाम साहब के नजदीक हकीकत मुस्तामला जो है वो गालिब है मजाज मुतआरफ पर, लिहाजा हकीकी माना ही मुराद लेंगे, मजाजी माना मुराद नहीं लेंगे। लिहाजा दरिया से बराह रास्त मुंह लगाकर पिएगा तो यह शख्स हानिस हो जाएगा, बर्तन वगैरह में पानी लेकर पिएगा या चुल्लू में पानी लेकर पिएगा तो फिर हानिस नहीं होगा। जबकि साहिबैन का जाब्ता मैंने आपको बतलाया कि साहिबैन के नजदीक जब हकीकत मुस्तामला के लिए मजाज मुतारफ हो तो फिर उमूम मजाज पर अमल किया जाता है, यानी ऐसा आम मजाजी माना ले लिया कि जो हकीकत को भी शामिल है, लिहाजा साहिबैन के नजदीक यह चाहे मुंह लगाकर पिए फिर भी हानिस हो जाएगा, और चाहे किसी बर्तन वगैरह में पिए फिर भी हानिस हो जाएगा। किस तरीके पर? उमूम मजाज के तरीके पर। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमन हलफला यशरबु मिन दिजलता, और जिस शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह वो दरियाए दिजला से नहीं पिएगा, देखा ला यशरबु मिन दिजलता, और एक सूरत आगे आएगी मिम्मा इदिजलता, तो कहते हैं उसने कसम उठाई ला यशरबु मिन दिजलता कि वो दरियाए दिजला से नहीं पिएगा, फशरिबा मिन्हा बि इना इन, फिर उसने बर्तन के जरिए उससे पी लिया, लम यहनस तो यह हानिस नहीं होगा, हता यकरा मिन्हा करअन, करा यकराऊ के माने हैं मुंह लगाकर पीना, करा यकराऊ के माने मुंह लगाकर पीना। तो देखो यहां हता यकरा मिन्हा करअन आगे मफूले मुतलक भी जिक्र है, और आपने पढ़ा है मफूल मुतलक को जिक्र करने के तीन फायदे हैं, कभी कभार इसके जरिए मजाज के अहतमाल को खत्म किया जाता है, कभी कभार इसके जरिए आदद का बयान मकसूद होता है, और कभी इसके जरिए नौ बतलाई जाती है। तो यहां पर ये जो करान मफूल मुतलक जिक्र किया ये मजाज के अहतमाल को खत्म करने के लिए कि मुंह लगाकर पीने से मुंह लगाकर पीना ही मुराद है, कोई और मजाजी माना मुराद नहीं है। तो कहते हैं ये शख्स लम यहनस ये शख्स हानिस नहीं होगा, हत्ता यकरा मिन्हा करअन इंदा अबी हनीफता, यहां तक कि ये शख्स वाकई उससे मुंह लगाकर पी ले इमाम साहेब के नजदीक। वकाला और साहिबैन फरमाते हैं इदा शरीबा मिन्हा भी इना इन यहनसु कि इसने अगर इस दरिया से किसी बर्तन के जरिए पिया तो हानिस हो जाएगा, ले अन्नहुल मुतआरफुल मफहूम, इसलिए क्योंकि यही मुतआरफ मफहूम है, यही इसका माना मुतआरफ है और मशहूर है। बर्तन में भी कोई पानी पिए तो कहते हैं मैंने दरिया से पिया है। मसलन लोग कहते हैं कि फलां लोग दरिया दिजला से पानी पीते हैं, कोई बस्ती है दरिया के करीब है, वो किस चीज का पानी इस्तेमाल करते हैं? उसी दरिया का। तो लोग क्या कहते हैं कि फलां दिजला से पीते हैं, और मुराद क्या होता है? बर्तन वगैरह में लेकर पीते हैं। तो कहते हैं लिअन्नहुल मुतआरफुल मफहूम, इसलिए क्योंकि दरिया से पीने का यही मफहूम मुतआरफ है और मशहूर है। व लहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई, व लहू इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न कलिमता मिन लितबईजी कि कलिमा मिन तबईज के लिए आता है, वह हकीकतहू फिल करई और हकीकत इसकी जो है मुंह लगाकर पीने में है, वह यह मुस्तामलतुन और यह हकीकत मुस्तामल है यानी इस्तेमाल होती है, इस तरह अमल किया जाता है। भाई देखिए उस शख्स ने क्या कहा है, वल्लाही ला अशरबु मिन दिजलाता, मीन दिजलाता, ये मीन आया और मीन किस लिए आता है, तबईस के लिए कि दिजला से यानी बाज़ हिस्सा थोड़ा सा पानी उसमें से पीऊंगा, तो मीन किस लिए आता है, तबईस के लिए आता है। वह हकीकतहू फिल करई, और इसकी हकीकत जो है मुंह लगाकर पीने में है, मुंह लगाकर पी रहा है तो यह हकीकतन उस दरिया का बाज पी रहा है, उस दरिया का बाज। तो यह माना है, वलहू इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्न कलिमत मिन लितबईजी, कि कलिमा मिन तबईज के लिए है, वह हकीकतहू फिल करई, और इसकी हकीकत जो है मुंह लगाकर पीने में है, वही मुस्तामलतुन, और यह हकीकत मुस्तामल भी है, वलिहादा यहनसु बिल करई इजमान, और इसीलिए मुंह लगाकर पीने से यह बिल इतफाक हानिस हो जाएगा। मैंने आपको बतलाया साहिबैन का क्या मजहब है, मुंह लगाकर पिए फिर भी हानिस, और बर्तन वगैरह में पिए फिर भी हानिस, किस वजह से, उमूम मजाज की वजह से। मालूम हुआ मुंह लगाकर पीने में तो बिल इत्तेफाक हानिस हो जाता है। तो इमाम साहब की दलील चल रही है, कहते हैं यह हकीकत मुस्तामल भी है, वलिहादा यहनसु बिल करई इजमान, और इसीलिए यह मुंह लगाकर पीने से यह बिल इत्तेफाक हानिस हो जाएगा। यानी साहिबैन भी मानते हैं कि ये मुंह लगाकर पिएगा तो हानिस हो जाएगा, तो ये हकीकतें मुस्तामला है भाई। जब हकीकत मौजूद है तो अब हम मजाज की तरफ नहीं जाएंगे। तो कहते हैं वलिहादा यहनसु बिल करई इजमान, और इसी वजह से मुंह लगाकर पीने से ये बिल इत्तेफाक हानिस हो जाएगा। फमनअतिल मसीर इलल मजाजी, तो मना कर दिया हकीकत ने, मनाअत के अंदर जमीर हकीकत को राजे है। फमनअतिल मसीर इलल मजाजी, तो हकीकत ने रोक दिया मजाज की तरफ जाने से। व इन काना मुतआरफन, अगरचे मजाज मुतआरफ है, मशहूर है। आगे देखिए, व इन हलफ ला यशरबु मिम्मा इदिजलाता, अब मां का लफ्ज भी आ गया, एक आदमी ने कसम उठाई कि वल्ला मैं दिजला के पानी से नहीं पीऊंगा। कहते हैं अब चाहे बर्तन में पिए फिर भी हानिस, और दिजला से निकलने वाली किसी और छोटी नहर से पिए तो भी हानिस, क्योंकि ये सब दिजला का पानी है, और इसने तो कहा था मैं दिजला के पानी से नहीं पीऊंगा। कहते हैं वह इन हलफ ला यशरबु मिम्मा दिजला था, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वो दिजला के पानी से नहीं पिएगा, फशरिबा मिन हाबी इना इन, फिर इसने बर्तन के जरिए उस दिजला से पी लिया, हानिसा, तो यह हानिस हो गया। लिअन्नहु बादल इग्तिराफी बकिया मनसूबन इलैही, इग्तराफ इग्तरिफ इग्तिराफ का माना है चुल्लू भरना, हाथ में पानी लेना, यानी चुल्लू भरकर पानी लेना, तो इसको इग्तिराफ कहते हैं, चुल्लू में पानी लेना। यहां मुराद आम है भाई, चाहे हाथ के जरिए ले या बर्तन के जरिए ले, उस सब को इग्तिराफ कह दिया गया। कहते हैं लिअन्नहु बादल इग्तिराफी बकिया मनसूबन इलैही, इसलिए क्योंकि यह पानी जब इसको दरिया से ले लिया गया, दरिया से ले लिया गया, बकिया मनसूबन इलैही, फिर भी ये दरिया की तरफ ही मनसूब होकर बाकी है, इसको दिजला का पानी ही कहते हैं। वह हुआ शर्तु, और वही तो शर्त है कि दिजला का पानी पिया तो हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वह हुआ शर्तु, और यही तो शर्त है कि ऐसा पानी पिए जो दिजला की तरफ मनसूब है तो यह हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वह हुआ शर्तु, और यही दिजला की तरह मनसूब होना ही तो शर्त है। फसार कमा इदा शरीबा मिम्मा इनहरी युखद मिन दिजलाता, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे शख्स ने पानी पिया है, मिम्मा इनहरीन, किसी नहर के पानी में से, ऐसी नहर युखद मिन दिजलाता, जिसको दिजला से लिया गया है, दिजला से निकाली हुई किसी नहर से पानी लिया, तब भी यह क्या हो जाएगा, हानिस। फिर तर्जमा देख लीजिए, फसारा कमा इदा शरीबा, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इस शख्स ने पानी पिया है, मिम्मा इन नहरिन, एक ऐसी नहर के पानी में से, यू खदुम इन दिजलाता, जिसको लिया गया है दिजला से। आगे देखिए, वमन काल इल्लम अशरबिल मा अल्लदी फी हादल कूजिल यौम फम्रअतुहु तालिकुन। सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह इस कूजे के अंदर जो पानी है, अगर वो मैंने आज ना पिया तो मेरी बीवी को तलाक है। यहां हाजल कूज, भाई कूज का लफ्ज कराएगा, कूज याद रखो ये भी लोटे की तरह का एक बर्तन होता था, अलबत्ता लोटे का मुंह तो बड़ा होता है और इसका मुंह ऊपर पतला होता था सुराही की तरह, और इसके जरिए भी वजू वगैरह भी किया जाता था और इससे पानी वगैरह भी पिया जाता था। तो एक आदमी ने उस कूजे की तरफ इशारा किया और कहा कि वल्लाह अगर मैंने आज ये पानी जो इस कूजे के अंदर है इसको न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है। और हाल यह है कि कूजे में पानी है ही नहीं, कूजा खाली पड़ा हुआ है। और वो क्या कहता है, वल्लाह वो पानी जो इस कूजे में मौजूद है, वो पानी जो इस कूजे में मौजूद है अगर मैंने इसको आज न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है। तो याद रखो, तरफैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि कसम जो है वो इसलिए खाई जाती है ताकि उसको पूरा किया जा सके। लिहाजा यमीन के मुनाकिद होने के लिए जरूरी है कि कसम खाने के बाद उसको पूरा करना मुमकिन हो। अगर उसको पूरा करना मुमकिन ही नहीं है तो फिर वो कसम मुनाकिद ही नहीं हुई। कसम खाने का मकसद उस कसम को पूरा करना होता है, लिहाजा कसम खाने के बाद उसका पूरा करना मुमकिन होना चाहिए। अगर कसम ऐसी चीज की खाई है कि जिसको पूरा करना मुमकिन ही नहीं है तो वो कसम ही मुनाकिद नहीं हुई। लिहाजा तरफैन फरमाते हैं इस सूरत में चूंकि कूजे के अंदर पानी है ही नहीं, लिहाजा इस पानी का पीना मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन ही नहीं है तो यह कसम मुनाकिद ही नहीं हुई, यह शख्स हानिस भी नहीं होगा और इसकी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इन लम अशरबिल मा अल्लदी फी हादल कूजिल यौमा, कि अगर मैंने न पिया वो पानी जो इस कूजे के अंदर है आज के दिन, फमरअतुहु तालिकुन, तो उसकी बीवी को तलाक है, वलैस फिल कूजी माउन, और हाल यह है कि कूजे के अंदर पानी नहीं है, यानी कसम जब खा रहा है उसी वक्त ही उसको पूरा करना नामुमकिन है। और आगे सूरत आएगी कि उस वक्त तो मुमकिन था, बाद में उस पर अमल करना मुमकिन ना रहा। तो यहां पर वो सूरत है जब कसम खा रहा है उस वक्त ही उसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं वलैसा फिल कूजी माउन, और हाल यह है कि कूजे के अंदर पानी नहीं है, लम यहनस, तो यह शख्स हानिस नहीं होगा क्योंकि कसम मुनाकिद ही नहीं हुई। फइनकान फीही माउन, और अगर उस कूजे के अंदर पानी था जब कसम खाई उस वक्त पानी था, फउरी का कबल लैली, फिर उस पानी को बहा दिया गया रात से पहले। अरा का यूरी को इराकतन का माना है पानी वगैरह को जमीन पर बहा देना। तो कहते हैं फइनका नफी ही माउन, तो अगर उस कूजे के अंदर पानी था यानी कसम जिस वक्त खाई उस वक्त पानी मौजूद है, फउरी का कबल लैली, फिर उसको रात से पहले बहा दिया गया, लम यहनस, तो फिर भी वो हानिस नहीं होगा। वहादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्ला, और ये तरफैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। भाई फिर रात आने से पहले वो पानी बहा दिया गया तो फिर भी ये हानिस नहीं होगा। वजह ये कि कसम खाने का मकसद ये होता है कि उसको पूरा किया जाए, तो जब उसके साथ वक्त को जिक्र कर दिया तो फिर ये फेल करना उस पर वाजिब ही नहीं है, ये जो उसने कसम जिसकी खाई है, इल्ला आखिर वक्त में उस पर ये फेल करना वाजिब हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त गुजरने वाला है, अब उसके लिए वे फेल करना वाजिब है, नहीं करेगा तो हानिस हो जाएगा। और आखिर वक्त के अंदर तो बर्तन फिर खाली हो चुका है, उसका पानी बहा दिया गया था, तो लिहाजा इस सूरत में भी यह कसम बातिल हो जाएगी। तो यहां देखो, मुनाकिद होते वक्त उसको पूरा किया जा सकता था, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया था उससे पहले ही उसको पूरा करना महाल हो गया, तो लिहाजा इस सूरत में भी यह कसम बातिल हो जाएगी, इसका कोई एतबार नहीं है। तो यह माना है फउरी ककब लल्लैलि लम यहनस, के रात से पहले उस पानी को बहा दिया गया तो यह हानिस नहीं होगा। वहादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्ला, और यह तरफैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يحنس في ذلك كله, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सब में वो हानिस हो जाएगा, चाहे कसम खाते वक्त ही पानी मौजूद नहीं था, चाहे शाम आने से पहले पानी गिरा दिया गया, दोनों सूरतों में ये हानिस होगा। लेकिन कब हानिस होगा? जब शाम हो जाएगी, जब रात आ जाएगी, क्योंकि रात तक की तो उसने कसम खाई है, उससे पहले तो ये हानिस ही नहीं है। हां, जब रात आ गई अब ये हानिस हो जाएगा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला यहनसु फी दालिका कुल्लिही, कि वो शख्स हानिस हो जाएगा इस सब में, यानी इदा मजल यौमू, यानी जब वो दिन गुजर जाए, वो हानिस होगा जब वो दिन गुजर जाए। वह अला हादल खिलाफ इदाकान अल यमीन बिल्लाह ताला, और इसी इख्तिलाफ पर है जब यह कसम अल्लाह के लिए हो। भाई इस कसम के अंदर तो उसने बीवी की तलाक को मुअल्लक किया है, लेकिन अगर अल्लाह की कसम खाता है तो उसमें भी यही इख्तिलाफ है। तरफैन के नजदीक वो हानिस नहीं, जब हानिस नहीं तो उस पर कफारा भी नहीं, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वो हानिस हुआ तो अब उस पर कसम का कफारा वाजिब होगा दोनों सूरतों में। तो कहते हैं वह अला हादल खिलाफी इदाकान अल यमीन बिल्लाह ताला, और इसी इख्तिलाफ पर है जब कसम अल्लाह के लिए हो। वह असलू हू, और इस इख्तिलाफ की असल यह है, यानी इसका जाबता यह है कि अन्ना मिन शर्त इनकाद अल यमीन व बका ही, कि यमीन के मुनाकिद होने और इसके बाकी रहने के लिए इस शर्त में से है अत तसव्वुरू, कि उसका तसव्वुर हो सके, यानी उस कसम के पूरा होने का तसव्वुर हो सके। इस कसम के मुनाकिद होने के लिए जरूरी है कि जिस वक्त कसम खाई जाए उस वक्त शर्त को पूरा करने का तसव्वुर किया जा सके। यह इसी तरह यमीन के बाकी रहने के लिए यह शर्त है कि उस कसम के पूरा करने का तसव्वुर किया जा सके। तो कहते हैं वह असलहू, और इस इख्तिलाफ का जाबता यह है कि अन्ना मिन शर्त इनकाद अल यमीन व बका ही, कि कसम के मुनाकिद होने और इसकी बका की शर्त में से है अत तसव्वुर, इसका तसव्वुर यानी उसके पूरा करने का तसव्वुर इंदहुमा तरफैन रहमहुमल्ला के नजदीक खिलाफन लि अबी यूसुफ रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक कसम जब खाई है तो इसके पूरा होने का इम्कान जरूरी नहीं है, तो उनके नजदीक कसमें मुनाकिद हो गई दोनों सूरतों में, अगरचे उसके पूरा करने का इम्कान नहीं था। एक में इब्तिदाअन ही इम्कान नहीं था क्योंकि बर्तन खाली था, और दूसरे में बकाअन इम्कान बाकी न रहा भाई, तो लिहाजा दोनों सूरतों में कसम तो मुनाकिद हो गई, लिहाजा वो कफारा देगा भाई। तो कहते हैं खिलाफन लि अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के, लि अन अल यमीन इन्नमा तुअक़दु लिल बिर्री, ये तरफैन की दलील चल रही है भाई, दरमियान में सिर्फ इतना बताया, बखिलाफ इमाम अबू यूसुफ के, उनके नजदीक यमीन के इनकाद और बका के लिए उसका तसव्वुर शर्त नहीं है। तो कहते हैं लिअन्न अल्यमीन इन्नमा तुअक़दु लिल बिर्री, इसलिए क्योंकि जो कसम है वो इसलिए खाई जाती है कि उसको पूरा किया जा सके, फला बुद्दा मिन तसव्वुरिल बिर्री, लिहाजा जरूरी है पूरा करने का तसव्वुर, कि पूरा होने का तसव्वुर हो सके, लियुम्किना इजाबुहू, ताकि पूरा करने को वाजिब करना मुमकिन हो सके। भाई एक आदमी ने एक कसम खाई है, अगर इसका पूरा करना मुमकिन ही नहीं है तो पूरा करने को आप वाजिब कैसे करार दे सकते हो? पूरा करना उस पर वाजिब तभी होगा जब पूरा करना मुमकिन भी हो, अगर पूरा करना मुमकिन ही नहीं है तो आप इसको वाजिब कैसे करार दे सकते हो उस पर, कि इसे आपको करना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं फला बुद्दा मिन तसव्वुरिल बिर्री, लिहाजा उस कसम के पूरा होने का तसव्वुर जरूरी है, लियुम्किन इजाबुहू, ताकि मुमकिन हो उस पूरा करने को वाजिब करना, व लहू, अब इमाम अबू यूसुफ रमला की दलील आ गई, व लहू, इमाम अबू यूसुफ रमला की दलील यह है कि अन्नहु अमकन अल कौल बिन इकादिही मुजिबन लिल बिर्री अला वजही यज़हरु फी हक़िल खलफी व हुवल कफ़ारतु, यह इबारत जरा मुश्किल है, इसको समझ लीजिए। तो कहते हैं वह लहू, इमाम अबू यूसुफ रमला की दलील यह है कि अन्नहु अमकन अल कौल बिन इकादिही, कि इस कसम के मुनाकिद होने का कौल मुमकिन है, अमकन अल कौल बिन इकादिही, कि इस कसम के मुनाकिद होने का कौल मुमकिन है, मुजिबन लिल बिर्री, इस हाल में कि यह कसम पूरा करने को वाजिब कर रही है, अला वजहिन, ऐसे तरीके पर, यज़हरुफी हक़िल खलफी, के वो खलीफा के हक में जाहिर होगा, कि वो वजूब जो है खलीफा के हक में जाहिर होगा। भाई देखिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये कहा जा सकता है कि ये कसम मुनाकिद हो गई है, इसको पूरा करना वाजिब है, और पूरा तो नहीं किया जा सकता, तो इस पूरा करने का खलीफा क्या है? कफारा, कफारा उसकी जगह पर आ जाएगा, तो असल ना आ सके तो उसकी जगह उसका नाइब आ जाता है। तो यहां पर भी पूरा करना तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका खलीफा यानी कफारा तो आ सकता है, लिहाजा उस आदमी पर कफारा वाजिब करार दे देंगे। उस आदमी ने एक ऐसे काम की कसम खाई है जिसे वो पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस आदमी पर इस कसम को पूरा करना वाजिब है। भाई आप कैसे वाजिब करार देते हैं, वो तो पूरा कर ही नहीं सकता। कहते हैं पूरा ना भी कर सके यानी असल पे अमल नहीं भी कर सकता तो उसका खलीफा तो आ सकता है, यानी पूरा करने की जगह क्या आ जाएगा, कफारा आ जाएगा, और ये कफारा उस पूरा करने का नाइब है और खलीफा है। तो असल ना भी आ सके लेकिन कम से कम नाइब तो आ सकता है, लिहाजा यूं कहा जाएगा कि ये कसम मुनाकिद हो गई है और इसने कफारे को वाजिब कर दिया है। तो कहते हैं वल्लहू, इमाम अबू यूसुफ रमला की दलील यह है कि अन्नहू अमकन अल-क़ौल बिन-इक़ादिही, कि यह मुमकिन है कि यह कहा जाए कि यह कसम मुनाकिद हो गई है, मूजिबन लिल बिर्री, ये पूरा करने को वाजिब करने वाली है, ये कसम को पूरा करने को वाजिब करने वाली है, अला वजही यज़हरु फी हक़िल खलफी, ऐसे तरीके पर कि वो खलीफा के हक में जाहिर होगा, वो वाजिब करना खलीफा के हक में जाहिर होगा, वह हुवल कफ़ारतु, और वो खलीफा जो है वो कफ़ारा है, भाई वो नाइब जो है वो कफ़ारा है। तो खलफ का माना खलीफा और नाइब, भाई कुल ना हम कहते हैं ला बुद्द मिन तसव्वुरिल असली लिया नाकिदा फी हक्किल खलफी, हम कहते हैं भाई असल का तसव्वुर जरूरी है, कसम खाने के बाद उसका पूरा करना मुमकिन होना चाहिए, पूरा करना यह है असल और कफारा इसका नाइब है, तो पूरा करना मुमकिन हो तो फिर ही उसकी जगह उसका नाइब आ सकता है। अगर असल का तसव्वुर ही ना हो सके तो फिर वहां नाइब भी नहीं आ सकता, क्योंकि नाइब किसकी जगह पर आता है, असल की जगह पर। जब असल की जगह ही नहीं है, असल नहीं आ सकता, तो उसकी जगह नाइब कहां से आ गया। जैसे बादशाह और उसका नाइब, बादशाह जब किसी सफर वगैरह पर जाएगा तो अपना नाइब मुकरर करेगा, तो यह नाइब बादशाह की जगह पर आया। अगर एक मकाम पर बादशाह की जगह ही नहीं है, बादशाह खुद नहीं आ सकता, तो उसका नाइब भी वहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि नाइब ने बादशाह की जगह पर आना है और यहां तो बादशाह की जगह ही नहीं है भाई जी। तो यहां पर भी ये कफारा नाइब है किसका, बिर का, बिर रोन का, यानी कसम पूरा करने का। तो पूरा करने का तसव्वुर हो सके जी। लेकिन फिर पूरा किया नहीं तो उसकी जगह नाइब यानी कफारा आ जाएगा, लेकिन अगर पूरा करने का तसव्वुर ही नहीं हो सकता तो वहां उसकी जगह पर नाइब भी नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। कहते हैं कुल ना हम कहते हैं लाबुद्द मिन तसव्वुरिल असली, कि असल यानी पूरा करने का तसव्वुर जरूरी है, लिया नाकिदा फी हक़िल खलफी, ताकि यह कसम जो है खलीफा के हक में मुनाकिद हो जाए। असल का तसव्वुर जरूरी है, फिर ही यह खलीफा के हक में मुनाकिद होगी, वैसे मुनाकिद ही नहीं होगी, यानी फिर ही खलीफा आ सकता है, वैसे खलीफा नहीं आ सकता। कुल ना, तो हम कहते हैं ला बुद्द मिन तसव्वुरिल असली, के असल का तसव्वुर जरूरी है, लियान आकिदा फी हक़िल खलफी, ताकि नाइब के हक में कसम मुनाकिद हो सके, व लिहाजा ला यनाकिदुल गमूस मूजिबन लिल कफारती, और इसीलिए तो यमीन गमूस मुनाकिद नहीं होती इस हाल में कि वह कफारे को वाजिब करने वाली हो। भाई यमीन गमूस माजी के किसी फेल पर झूठी कसम खा लेना, इसको यमीन गमूस कहते हैं। तो यमीन गमूस तो माजी के फेल पर खाई है और झूठ बोला है, वो काम तो ये कर नहीं सकता, उसका तो पूरा करना मुमकिन नहीं। भाई मुस्तकबिल के बारे में कोई कसम खाता है, वल्ला मैं ये काम जरूर करूंगा, फिर तो इसके पास इम्कान है, उसको पूरा कर सकता है, और फिर भी ना करे तो फिर कफारा देना पड़ता है। तो जब असल का तसव्वुर हो सके फिर ही कफारा आता है, लेकिन माजी का एक काम तो गुजर चुका है, लिहाजा उसमें तो उसके करने की गुंजाइश ही नहीं है। जब गुंजाइश नहीं है, जब वहां असल की गुंजाइश नहीं है, तो असल की नाइब यानी कफारा भी नहीं आता। इसीलिए यमीन गमूस में कफारा नहीं आता, क्योंकि वहां असल की गुंजाइश नहीं है, असल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जमाना गुजर चुका है। तो कहते हैं वलिहादा, और इसी वजह से ला यनअकिदुल गमूस यमीन गमूस मुनाकिद नहीं होती, मूजिबन लिल कफारती, कफारे को वाजिब करते हुए। वलौ कानतिल यमीन मुतलकतन फफिल वजहिल अव्वली ला यहनसु इंदहुमा, अब तीसरी और चौथी सूरत आ गई, वही पहली दो सूरतें साथ जोड़नी है आपने। पहली सूरत क्या थी, उस शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह इस कूजे के अंदर जो पानी है, अगर मैंने आज इसको न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है, और हाल यह है कि कूजे में पानी है ही नहीं। दूसरी सूरत, कूजे में पानी मौजूद है और अब कहता है कि वल्लाह अगर मैंने इस कूजे का पानी आज न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है, और शाम से पहले पहले किसी ने वो पानी बहा दिया, तो जब आखिरी वक्त आया उस वक्त कूजे में पानी मौजूद ही नहीं, उस वक्त कसम को पूरा करना मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा ये कसम मुनाकिद ही नहीं हुई। जबकि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों सूरतों में वो हानिस हो गया, क्योंकि अगरचे कसम को पूरा करना तो मुमकिन ना रहा लेकिन उसका नाइब तो आ सकता है, कफारा आ जाएगा जी। तो अब दूसरी सूरत है कि अब उसने मुतलक कसम खाई है, पहले उसने वक्त के साथ मुकय्यद की थी, आज अगर मैंने इस कूजे का पानी ना पिया, अब जरा आज के लफ्ज को हटा दें, जमाने को वो जिक्र नहीं करता, वैसे ही कहता है कि अगर इस कूजे का पानी मैंने न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है जी। वक्त को नहीं जिक्र किया, वक्त को जिक्र करता था तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते थे आखिर वक्त में हानिस होगा, जब वो वक्त गुजर जाएगा तब वो हानिस होगा, और अब तो यहां वक्त ही जिक्र नहीं है, तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं कि यहां वो फौरन हानिस हो जाएगा। वहां रात जब आती थी तब हानिस होता था, और अगर कसम मुतलक है वक्त जिक्र नहीं है तो उसी वक्त हानिस हो जाएगा जब उसमें पानी नहीं है, और अगर उसमें पानी मौजूद है तो फिर इस सूरत के अंदर जब उस पानी को गिरा दिया जाएगा तब यह हानिस हो जाएगा, क्योंकि अब कसम का पूरा करना मुमकिन न रहा भाई। जबकि तरफैन रहमतुल्लाह जी उनका मजहब आगे आएगा, पहले यहां तक जरा देख लीजिए, कहते हैं वलौ कानतिल यमीनु मुतलकतन, और अगर ये कसम मुतलक थी यानी इसमें वक्त की कैद नहीं थी, फफिल वजहिल अव्वली, तो पहली सूरत के अंदर यानी जिस वक्त बर्तन में पानी था ही नहीं, तो फफिल वजहिल अव्वली, तो पहली सूरत में ला यहनसु इंदहुमा, तरफैन के नजदीक ये हानिस नहीं होगा। क्यों नहीं हानिस होगा? क्योंकि पूरा करना मुमकिन ही नहीं है, कसम मुनाकिद ही तब होती है जब उसका पूरा करना मुमकिन हो, तो इनके नजदीक कसम मुनाकिद ही नहीं हुई। तो कहते हैं ला यहनसु इंदहुमा, तो इस तरफैन के नजदीक ये हानिस नहीं होगा, वाइंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह यहनसु फिल हाल, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये फिलहाल ही हानिस हो जाएगा, क्योंकि पूरा करना मुमकिन नहीं, लेकिन बहरहाल कफारा तो वाजिब किया जा सकता है, तो कफारा वाजिब हो जाएगा, उनके नजदीक हानिस हो गया और अब कफारा देना पड़ेगा। वफिल वजह सानी, और दूसरी सूरत में यहनसु फी कौलिहिम जमीहा, ये शख्स हानिस हो जाएगा सबके कौल के मुताबिक। दूसरी सूरत क्या कि उसने कहा वल्लाह इस कूजे का पानी अगर मैंने न पिया तो मेरी बीवी को तलाक है, और हाल यह है कि उस कूजे में पानी मौजूद है, तो जब तक पानी मौजूद है इसके पास मोहलत है, ये उसको पीकर अपनी कसम पूरी कर सकता है, लेकिन जब उस कूजे का पानी गिरा दिया गया तो अब इस सूरत में तरफैन भी फरमाते हैं कि ये कसम पूरी कर सकता था, कसम का पूरा करना मुमकिन था लेकिन इसने कसम को पूरा न किया, और अब तो कसम का पूरा करना मुमकिन ही ना रहा, लिहाजा ये हानिस हो गया। तो लिहाजा यह शख्स हानिस हो गया, इसके पास वक्त था, यह आराम से अपनी कसम पूरी कर सकता था, तो कसम का पूरा करना मुमकिन था लेकिन इसने इसको पूरा किया नहीं, लिहाजा अब जब पानी गिरा दिया गया तो अब यह हानिस हो गया। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि यह हानिस हो गया भाई। तो कहते हैं वफिल वजह सानी, और दूसरी सूरत में यहनसु फी कौलिहिम जमीआ, यह हानिस हो जाएगा इन सब के कौल में। फअबू यूसुफ रहमहुल्लाहु फर्रक बैन अल मुतलक वल मुवक्कति, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फर्क फरमाया है मुतलक और मुवक्कत के दरमियान। तो पहली सूरत के अंदर अलयौम का लफ्ज जिक्र था, तो वो कसम उस वक्त के साथ मुकय्यद थी यानी मुवक्कत थी, और ये दूसरी सूरत में अलयौम का लफ्ज उसने जिक्र नहीं किया, तो ये मुतलक है भाई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह उसमें फरमाते थे वो जो मुवक्कत थी कि शाम का वक्त जब गुजर जाएगा रात आएगी फिर ये हानिस होगा, और यहां पर जैसे ही कसम खाई है साथ ही हानिस हो गया। कौन सी सूरत? कसम खाई है और बर्तन में पानी नहीं है, तो पहली सूरत में उसने अलयौम का लफ्ज जिक्र किया था, लिहाजा शाम जब आ हो जाएगी दिन गुजर जाएगा फिर हानिस होगा, और यहां पर फौरन ही हानिस हो जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने मुतलक और मुअक्कत में फर्क किया। अब उसकी वजह क्या है वो आगे बयान करेंगे। तो कहते हैं अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फर्रका बैन अल मुतलकी वल मुअक्कती, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फर्क किया मुतलक और मुअक्कत के दरमियान। व वजहुल फर्क, और फर्क की वजह यह है कि अन्न तौकीत लितौसियाती, कि जो वक्त मुकर्रर किया जाता है लितौसियाती, यह वुसअत के लिए होता है ताकि आदमी आराम से उस कसम पर अमल कर सके। तो कहते हैं फर्क की वजह यह है कि अन्न तौकीत लितौसियाती, कि जो वक्त मुकर्रर किया जाता है यह वुसअत के लिए होता है। फला यजिबुल फ़िअलु इल्ला फी आखिरिल वक्ति, तो वो फेल जो है वाजिब नहीं होता मगर आखिर वक्त के अंदर। फला यहनसु क़ब्लहु, तो लिहाजा उससे पहले यह शख्स हानिस नहीं होता। वफिल मुतलकी यजिबुल बिर्रु कमा फारागा, और मुतलक कसम के अंदर उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है। कमा फारागा, जैसे ही यह शख्स कसम से फारिग हुआ, जैसे ही इसने कसम खाई और कसम से फारिग हुआ, साथ ही इस पर उस कसम को पूरा करना वाजिब हो गया। और पूरा तो यह कर नहीं सकता क्योंकि बर्तन में तो पानी है ही नहीं, तो उसी वक्त हानिस हो गया। तो कहते हैं वफिल मुतलकी यजिबुल बिर्रु कमा फरागा, और मुतलक कसम के अंदर पूरा करना वाजिब होता है जैसे ही वो कसम से फारिग होता है। वक़द आजाज़ा, और हाल यह है कि ये तो आजिज है क्योंकि पानी मौजूद ही नहीं बर्तन में। फयहनसु फिल हाल, तो ये फिलहाल ही हानिस हो जाएगा। वहुमा फर्रका बैनहुमा, और तरफैन ने भी इन दोनों में फर्क किया है, यानी मुतलक और मुअक्कत में फर्क किया है। वजहुल फर्क, और फर्क की वजह यह है कि अन्न फिल मुतलकी यजिबुल बिर्रु कमा फारागा, कि मुतलक के अंदर पूरा करना वाजिब होता है। कमा फारागा, जैसे ही फारिग होता है, वही उसूल जाब्ते जो इमाम अबू यूसुफ ने जिक्र किए वही ये भी जिक्र फरमाते हैं कि मुतलक के अंदर जैसे ही कसम से फारिग होता है उसको पूरा करना वाजिब होता है। तो कहते हैं अन्न फिल मुतलकी यजिबुल बिर्रु कमा फरगा, कि मुतलक कसम के अंदर पूरा करना वाजिब होता है जैसे ही वो कसम से फारिग होता है। फइदा फातल बिर्रु, फिर जब पूरा करना फौत हो गया। बिफवाति मा अकद अलैहिल यमीनु, उस चीज के फौत हो जाने की वजह से जिस पर कसम उसने खाई थी, यानी वो पानी गिरा दिया गया। ये दूसरी सूरत है, पानी भाई पहली सूरत में जब बर्तन में पानी नहीं था, फिर चाहे अलयौम का लफ्ज जिक्र करे या ना करे, तरफैन के नजदीक कसम मुनक्किद ही नहीं हुई क्योंकि इसको तो पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। बर्तन में पानी है ही नहीं तो पिएगा कैसे भाई, तो वो सूरत तो जिक्र की ही नहीं क्योंकि उसमें मुतलक हो या मुकय्यद हो तरफैन के नजदीक कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर शुरू में कसम को पूरा करना मुमकिन था, बर्तन में पानी था, फिर उसको बाद में बहा दिया गया, अब कसम को पूरा करना मुमकिन नहीं है, तो इसमें भी दो सूरतें थीं, एक मुतलक और एक मुअक्कत जिसमें अलयौम जिक्र था। तो वहां तरफैन ने फर्क किया है, वो फरमाते हैं कि जब इसने मुतलक कसम खाई है तो जैसे ही कसम खाई अब इस कसम को पूरा करना वाजिब हुआ, और बर्तन में पानी भी मौजूद है यह उसको पूरा कर भी सकता है, लेकिन जब पानी बहा दिया गया तो अब जिस चीज की कसम खाई थी वो फौत हो गया, अब यह उसको कर ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता तो अब हानिस हो जाएगा, अब हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं कि मुतलक के अंदर पूरा करना वाजिब होता है जैसे ही कसम से फारिग हो। फैदा फातल बिर्रो, तो जब यहां पूरा करना फौत हो गया। बिफवातिमा अकदा अलैहिल यमीनु, उस चीज के फौत हो जाने की वजह से जिस पर कसम उसने बांधी थी, यानी उसके बाद इतना वक्त था वो पानी पी सकता था, लेकिन अब वो पानी बहा दिया गया तो अब ये हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं फैदा फातल बिर्रु, तो जब पूरा करना फौत हो गया। बिफवातिमा अकदा अलैहिल यमीनु, उस चीज के फौत हो जाने की वजह से जिस पर उसने कसम खाई थी। तो यहनसु फी यमीनिही, तो ये शख्स अपनी कसम में हानिस हो जाएगा। कमा इदा मातल हालिफु वल माउ बाकिन, जैसे कि कसम खाने वाला मर जाए और पानी बाकी हो। पानी बाकी है और कसम खाने वाला मर गया तो अब भी कसम का पूरा करना मुमकिन नहीं, जब पूरा करना मुमकिन नहीं तो हानिस हो गया और उस पर कफारा आ गया, वो अब उसके वो रसा को उसकी तरफ से कफारा देना चाहिए अगर उनको इलम है भाई। तो कहते हैं कमा इदामा तल हालिफ वल माउ बाकिन, जैसे कि कसम खाने वाला मर जाए और पानी बाकी हो, तो जैसे इस सूरत के अंदर वो हानिस हो गया, इसी तरह पानी जब बाकी ना रहा। देखो एक है वो पानी जिसके पीने की इसने कसम खाई है और एक है ये कसम खाने वाला, तो कसम के पूरा करने के लिए जरूरी है ये कसम खाने वाला भी बाकी रहे और वो महल यानी पानी भी बाकी रहे। तो अगर पानी गिरा दिया गया तो महल खत्म, अगर अगरचे कसम खाने वाला बाकी है लेकिन पानी तो बाकी नहीं, लिहाजा यह हानिस। या इसका बरअक्स कर लो, पानी तो बाकी है लेकिन कसम खाने वाला मर गया है, तो इस सूरत में भी यह हानिस। भाई तो यह माना है कमा इदामात अल हालिफु वल माउ बाकिन, जैसे कसम खाने वाला मर जाए और हाल यह है कि पानी बाकी है। अम्मा फिल मुअक्कती यजिबुल बिर्रु फिल जुज़इल अखीरी मिनल वक्ती, और बाकी वो कसम जो मुअक्कत होती है तो उसके अंदर पूरा करना वाजिब होता है। फिल जुज़इल अखीरी मिनल वक्ती, उस वक्त के आखिरी जुज में। वइन दज़ालिका लम तबका महल्लियतुल बिर्रि, और उस वक्त तो पूरा करने का महल ही बाकी ना रहा। जब उसने कहा था आज मैंने यह पानी ना पिया और फिर पानी बहा दिया गया, तो आखिर जूस के अंदर तो पानी मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा कसम पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन ही नहीं है तो कसम बातिल हो गई। तो कहते हैं वह इन दसालिका लम तबका महल्लियतुल बिर्री, और उस वक्त तो पूरा करने का महल होना ही बाकी ना रहा। लिअदमित तसव्वुरी, इस वजह से कि पूरा करने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी को तो गिरा दिया गया है। फला यजिबुल बिर्रु फीही, तो इसके अंदर पूरा करना वाजिब नहीं होगा। व तबतुलुल यमीन, और यमीन बातिल हो जाएगी। कमा इदा अक़दहु, तवज्जो है क्या बात कर रहे हैं कि जब एक कसम मुअक्कत है तो उसमें फेल आखिरी जुज में वाजिब होगा, और आखिरी जुज में यानी शाम के करीब तो अब पानी ही गिर चुका है, तो लिहाजा यह कसम पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। तो इस वक्त फेल वाजिब हुआ जब उसका पूरा करना मुमकिन ही नहीं है, तो इस सूरत में कसम ही बातिल हो जाएगी। भाई तो यह माना है वह तब तुलुल यमीन, और कसम ही बातिल हो जाएगी। कमा इदा अक़दहु इब्तिदा अनफी हादिही हालति, जैसे कि इसने कसम बांधी थी इब्तिदा के अंदर इस हालत में, यानी जैसे इब्तिदा के अंदर ऐसी हालत में कसम खाई है जब पानी है ही नहीं, तो जैसे वहां कसम मुनाकिद ही नहीं होती थी, तो यहां पर भी जब आखिरी वक्त में वो कसम पूरा करने पर कादिर नहीं है तो कसम बातिल हो गई, कसम गोया है ही नहीं। यह माना है कमा इदा अक़दहु इब्तिदा अनफी हादिही हालति, जैसे कि उसने इसी हालत के अंदर इब्तिदा में कसम खाई हो। काला, इस काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह मन हलफा, और जिस शख्स ने कसम उठाई लयस अदन न समा, कि वो जरूर भी जरूर आसमान पर चढ़ेगा। सऊद का माना है ऊपर चढ़ना। लयस अदन न समा, कि वो जरूर भी जरूर आसमान पर चढ़ेगा। औलियकलीबन नहाद अल हजारा जहाबा, या वो जरूर भी जरूर इस पत्थर को बदलेगा सोने से, इस पत्थर को सोना बना देगा। तो कहते हैं इन अकदत यमीनुहु, तो उसकी कसम मुनाकिद हो गई। वह हानिसा आकी बहा, और कसम के बाद फौरन वह हानिस हो गया। एक आदमी ने कहा वल्लाह मैं आसमान पर जरूर चढ़ूंगा, या मैं इस पत्थर को जरूर सोना बनाऊंगा, तो कहते हैं इस सूरत में कसम मुनाकिद हो गई, और साथ ही वो उसके पूरा करने से आजिज भी आ गया, तो हानिस भी हो गया, लिहाजा फौरन ही उस पर कफारा वाजिब हो गया। इस पर इश्काल होता है कि आपने अभी हमें बताया कि कसम के मुनाकिद होने के लिए जरूरी है कि उसको पूरा करना मुमकिन हो, और आसमान पर चढ़ना तो मुमकिन ही नहीं है, और पत्थर को सोने से बदलना तो मुमकिन ही नहीं। कहते हैं नहीं, क्यों नहीं मुमकिन, आसमान पर चढ़ना भी मुमकिन है और पत्थर को सोने से बदलना भी मुमकिन है। आसमान पर फरिश्ते दिन रात चढ़ते रहते हैं भाई, तो मालूम आसमान पर चढ़ना मुमकिन है भाई, तो बतौर करामत के इसका भी जाना मुमकिन है, और इसी तरह पत्थर को सोने से बदलना तो हो सकता है बतौर करामत के अल्लाह ताला इसके लिए पत्थर को सोने से बदल दें, तो ये ऐसी चीज है जिसका होना मुमकिन है, लेकिन आदतन इंसान ऐसा कर नहीं सकता, तो कसम खाते ही मुनाकिद तो हो गई, क्योंकि ऐसा करना ऐसा होना मुमकिन तो है, लेकिन आदतन ये आजिज आ गया तो फौरन ही इसके हानिस होने का भी हुक्म लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बास चीजें हैं वो आदतन मुमकिन नहीं है, बास चीजें हकीकतन ही मुमकिन नहीं होती। एक बर्तन पानी से खाली है तो उसका पानी आप पी ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है जी। वो हकीकतन ही मुमकिन नहीं है, और आसमान वगैरह पर चढ़ना यह आदतन तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हकीकतन तो मुमकिन है, तो दोनों में फर्क है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमन हलफा, और जिस शख्स ने कसम उठा ली लया सादा न समा आ कि वो जरूर भी जरूर आसमान पर चढ़ेगा, औला यकलीबन नहाद अलहजरा जहबन या वो जरूर भी जरूर इस पत्थर को पलट देगा सोने से, इन आकदत यमीन हो तो उसकी कसम मुनाकिद हो जाएगी, वह हानिसा आकीबहा और वह कसम के बाद हानिस हो जाएगा। वकाल जुफरू रहमहुल्ला ला तनाकिदू, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि उसकी कसम मुनाकिद ही नहीं होगी, लिअन्नहु मुस्तहील आदतन, इसलिए क्योंकि आदतन महाल है, फअशबहल मुस्तहील हकीकतन, तो यह हकीकतन महाल के मुशाबे हो गई, फला या नाकिदु तो कसम मुनाकिद नहीं होगी। वलाना और हमारी दलील यह है कि अनबिर मुतसवर उन हकीकतन, कि यहां पूरा करना जो है उसका तसवुर किया जा सकता है हकीकत के एतबार से, ले अन सऊद इला समा मुमकिन उन हकीकतन, इसलिए क्योंकि आसमान की तरफ चढ़ना हकीकत के एतबार से मुमकिन है। अला तरा अनल मला इकत सादून समा, क्या आप देखते नहीं कि फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ते हैं, व कदा तहवुल हजरिजा हबम बि तहवील ला, और इसी तरह पत्थर का सोने से बदल जाना अल्लाह के बदल देने से, इसका भी तसव्वुर किया जा सकता है। वह इदाकान मुतसवरन, और जा यहां पूरा करने का तसव्वुर किया जा सकता है, यन आकिदुल यमीन मूजिबन लिखलफी, तो कसम मुनाकिद हो जाएगी अपने नाइब को वाजिब करते हुए, यानी पूरा करना तो वाजिब नहीं होगा क्योंकि उससे वह आजिज आ गया है, तो उसका नाइब यानी कफारा वाजिब हो जाएगा। तो कहते हैं वह इदाकान मुतसवरन, और जब इस यहां पूरा करने का तसव्वुर किया जा सकता है, तो यन आकिदुल यमीन मूजिबन लिखलफी, तो कसम मुनाकिद हो जाएगी खलीफा को यानी कफारे को वाजिब करते हुए। सुम यहनसु बिहुक्म अल-इज्ज़ साबित आदतन, फिर यह शख्स हानिस हो जाएगा बिहुक्म अल-इज्ज़ साबित आदतन, आदतन इज्ज़ के साबित होने के हुक्म से, कि आदतन ये इसको पूरा करने से आजिज है, तो हुक्म लगा दिया जाएगा कि यह हानिस हो गया, ये माना है। सुम यहनसु, फिर यह शख्स हानिस हो जाएगा बेहुक्म इज्ज साबित आदतन, आदतन वो इज्जत जो साबित है उसके हुक्म से। कमा इदामा तल हालिफु, जैसे कि कसम खाने वाला मर जाए, वही नहु यहनसु तो वो हानिस हो जाता है, मा इहतमाल इआदतिल हयाती, बावजूद इसके इसमें जिंदगी के वापस लौटाने का एहतमाल है कि अल्लाह इसको दोबारा जिंदा कर दें, लेकिन फिर भी उसको हानिस करार दे दिया जाता है। तो कहते हैं फइन्नहु यहनसु मा इहतमाल इआदतिल हयाती, तो कोई शख्स जब मर जाता है तो वह हानिस हो जाता है बावजूद उसके कि जिंदगी के लौटाने का एहतमाल है, बिखिलाफ मसअलतिल कूजी, बखिलाफ कूजे के मसले के, लिअन्न शुर्बल मा अल्लज़ी फिल कूजी वक्तल हल्फी, इसलिए क्योंकि वो पानी पीना जो कसम के वक्त कूजे में है, वला मा अफीही, और हाल यह है कि पानी उसमें नहीं है, हाल यह है कि कूजे में पानी नहीं है, और फिर इस कूजे के पानी को पी लेना, लायु तसव्वुरु, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, फलम या नाकिद तो वह कसम मुनाकिद ही नहीं हुई, क्योंकि वह हकीकतन महाल थी, और ये जो कसमें हैं ये आदतन महाल हैं, हकीकतन महाल नहीं, तो दोनों में फर्क है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं बिखिलाफ मसअलतिल कूजी, बखिलाफ कूजे के मसला के, लिअन्न शुर्बल मा अल्लज़ी फिल कूजी, इसलिए क्योंकि वो पानी पीना जो कूजे में है, वक्त अल हल्फी कसम खाते वक्त, वो पानी पीना जो कूजे में है कसम खाते वक्त, वला मा अफीही, और हाल यह है कि उसमें तो पानी नहीं, उसमें पानी नहीं है, और फिर उस पानी को पीना, ला यु तसव्वुरु, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, फलम या नाकिद तो वह कसम मुनाकिद नहीं हुई भाई। आगे देखिए बाबुल यमीन फिल कलामी, ये बाब है उस यमीन के बारे में जो कलाम के बारे में हो, यानी बात करने या न करने की कोई कसम खा ले तो उसका क्या हुक्म है, वो अब साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। कहते हैं बाबुल यमीन फिल कलामी, ये बाब है उस यमीन के बयान में जो कलाम के बारे में हो। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमन हलफा ला युकल्लिमु फुलानन, एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह मैं फुलां से बात नहीं करूंगा, भाई सूरत ये एक आदमी ने कसम खाई कि वल्लाह मैं फुलां से बात नहीं करूंगा, फिर वो सोया हुआ था और ये उसके पास गया और उससे बात की, और इतनी आवाज में बात कर रहा है, अगर वो जाग रहा होता तो सुन लेता, तो क्या इस तरह बात करने से ये हानिस हो जाएगा या नहीं, तो कहते हैं सूरत में ये हानिस हो जाएगा क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से बात कर दी है भाई। तो कहते हैं वमन हलफा ला युकल्लिमु फुलानन, और जिस शख्स ने कसम उठाई कि वो फुलां से बात नहीं करेगा, फकल्लमहु वहुवा बिहैसु यस्माऊ, तो इसने उससे बात की, वहुवा बिहैसु यस्माऊ, और वो दूसरा इस तौर पर है कि वो सुन रहा है, इल्ला अन्नहु नाइमुन, मगर ये कि वो सोया हुआ है, वो सुन रहा है यानी उसके कानों तक आवाज पहुंच रही है। इल्ला अन्नहु नाइमुन, मगर ये कि वो सो रहा है। हानिसा, तो ये शख्स हानिस हो जाएगा। लिअन्नहु कद कल्लमहु, इसलिए क्योंकि तहकीक इसने उससे बात कर ली। वसला इला समईही, और इसका कलाम उसके कानों तक पहुंच गया। लाकिन नहु लम यफहम लिनौमी ही, लेकिन वो शख्स समझा नहीं उस अपनी नींद की वजह से। फसार कमा इदा ना दाहू, तो ये इसी तरह हो गया जैसे इसने उसको निदा दी हो, आवाज दी हो। वह हुआ बिहैसु यस्माउ, और वो इस तरह हो कि वो सुन रहा है। लाकिन नहु लम यफहम, लेकिन उसको समझा नहीं। लि तगाफुली ही, उसकी गफलत की वजह से। कहते हैं भाई बात इसने की है, उसके कानों तक पहुंच रही है, अगरचे नींद की वजह से वो गाफिल है भाई। तो ये इसी तरह है जैसे ये शख्स इसी आदमी को दूर से आवाज दे। अब वो इसकी आवाज सुन तो रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही, तो इस सूरत में भी ये हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं कमा इदा नादाहू, जैसे कि ये कसम खाने वाला इस आदमी को आवाज दे। वह हुआ बिहैसु यस्माउ, और ये आदमी इस तौर पर है कि इसकी आवाज सुन रहा है। लाकिन नहु लम यफहम, लेकिन ये उसको समझा नहीं। लितगाफुली ही, अपनी गफलत की वजह से, तो भी हानिस हो जाएगा। वफी बाजी रिवायात इल मबसूती, और इमाम मोहम्मद रहमला की किताब मबसूत जो है उसकी बाजे रिवायात में है कि शुरिता अयू किजहू, कि यह शर्त है अयू किजहू कि यह कलाम उसको जगा दे। वो सोया हुआ है, यह जाकर उससे बात करता है, तो यह शर्त है कि यह कलाम दूसरे को जगा दे। तो अगर वो कलाम से जाग गया तो फिर यह हानिस होगा, वरना हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं वफी बाजी रिवायात इल मबसूती, और मबसूत की बाज रिवायात में है शुरिता अयू किजहू, कि यह शर्त है कि यह कलाम उस सोने वाले को जगा दे। वह अलैहि मशायखुना, और इसी पर हमारे फुकाहा हैं। साहिब हिदाया फरमा रहे हमारे फुकाहा इस पर हैं कि सिर्फ बात करने से हानिस नहीं होगा, बल्कि अगर वो सोने वाला इसकी बात से जाग जाए तो फिर इसको हानिस करार दिया जाएगा। कहते हैं लिअन्नहु इदा लम यतनब्बह, इसलिए क्योंकि जब ये सोने वाला मुतनब्बे नहीं हुआ, इसने बात की और वो मुतनब्बे नहीं हुआ, जागा नहीं, तो कान कमा इदा नादाहु मिन बाईदिन, तो ये इसी तरह है जैसे इसने दूर से उसको आवाज दी है। वह हुआ बिहैसु ला यस्माउ सौतहु, और वो इस तौर पर है कि वो उसकी आवाज नहीं सुन रहा, तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक हानिस नहीं होगा भाई। तो ये भी इसी तरह है, ये बात कर रहा है जब तक वो जागेगा नहीं, ये हानिस भी नहीं होगा। वलौ हलफ ला युकल्लिमुहु इल्ला बिइज़्निही, और अगर किसी शख्स ने कसम खाई कि वो फुलां से बात नहीं करेगा मगर उसकी इजाजत से। भाई सूरत ये, एक शख्स ने कसम खा ली कि वल्लाह मैं फुलां आदमी से बात नहीं करूंगा मगर उसकी इजाजत से, फिर उस शख्स दूसरे शख्स ने इजाजत दे दी लेकिन इसको बतलाया नहीं, किसी और के सामने कह दिया मैंने इसको इजाजत दे दी है, तो फिर इसने जाकर उससे बात कर ली। कहते हैं हानिस हो जाएगा, हानिस हो जाएगा, इसको कफारा देना पड़ेगा। भाई कफारा क्यों देना पड़ेगा, उसने तो इजाजत दे दी थी, उसके बाद इसने बात की है। कहते हैं भाई इजाजत में इत्तला देना जरूरी है, जब इस कसम खाने वाले को इत्तला नहीं मिली इजाजत की तो गोया इजाजत नहीं हुई, जब इजाजत नहीं हुई और इसने बात कर ली है तो हानिस हो गया, अब कफारा देगा भाई। तो कहते हैं वलौ हलफ ला युकल्लिमुहु इल्ला बिइज़्निही, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वो फुलां से बात नहीं करेगा मगर उसकी इजाजत से। फआदीना लहू, तो उस दूसरे आदमी ने इसको इजाजत दे दी। वलम यालम बिल इज़्नी, और हाल यह है कि कसम खाने वाले को इजाजत का इलम नहीं है। हत्ता कल्लमहु, यहां तक कि इसने उसके साथ बात कर ली। हानिसा, तो यह हानिस हो गया। कहते हैं लिअन्न अल-इज़्न मुश्तक़ुन मिनल अज़ान अल्लज़ी हुवल इलामु, कहते हैं इसलिए क्योंकि इज़्न मुश्तक है अजान से। इज़्न मुश्तक है अजान से, ये जो नमाज के लिए अजान दी जाती है, अजान को अजान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे को इत्तला दी जाती है, तो अजान का माना है इत्तला देना। तो कहते हैं ये जो इज़्न है, इजाजत जो है, ये भी अजान से मुश्तक है, और अजान का माना तो है इत्तला देना, तो इज़्न के अंदर भी इत्तला देना जरूरी है, फिर ही इज़्न होगी भाई। कहते हैं लिअन्न अल-इज़्न मुश्तक़ुन मिनल अज़ानी, इसलिए क्योंकि इज़्न का लफ्ज़ ये मुश्तक है उस अजान से। अल्लज़ी हुवल इलामु, जो कि इत्तला देना है, वो अजान कि जो इलाम है यानी इत्तला देना। और मिनल वुकूअ फिल उज़्नी, यह जो इज़्न का लफ्ज है यह वुकूअ फिल उज़्न से माखूज है, यानी कान में कोई चीज वाकई हो तो इसको इज़न कहते हैं। तो मालूम हुआ इजाजत के अंदर भी कान के अंदर बात का पहुंचना और इजाजत का पहुंचना जरूरी है, फिर ही इसको इज़न कहा जाएगा। तो कहते हैं अमीनल वकूई फिल उजुनी, या ये इज़न जो है ये उजुन में वाकई होने से मुश्तक है। वकुल्लु ज़ालिका ला यतहक्ककु इल्ला बिस्समाई, और इनमें से भी कोई भी चीज नहीं पाई जा सकती इल्ला बिस्समाई मगर सुनने से। इज़न का लफ्ज़ या तो अजान से मुश्तक है, और अजान का माना भी इत्तिला देना, इत्तिला में के अंदर भी बात कान तक पहुंचना जरूरी है, या इज़न ये माखूज है कान के अंदर वाकई होने से, और इसके अंदर भी कान के अंदर बात का पहुंचना जरूरी है। तो यह माना है वकुल्लु ज़ालिका ला यतहक्ककु इल्ला बिस्समाई, और ये इत्तिला देना और कान में वाकई होना यह पाया नहीं जा सकता मगर सुनने से ही। वकाल अबू यूसुफ रहमल्लाहु ला यहनसु, और इमाम अबू यूसुफ रहमल्लाह फरमाते हैं कि यह शख्स हानिस नहीं होगा। लिअन्न अल-इज़्न हुवल इतलाकु, इसलिए क्योंकि इज़्न जो है वो इतलाक है यानी इजाजत देना है। वह अन्नहु यतिम्मु बिल आज़िनी, और ये इजाजत देने वाले से ही ताम हो जाता है। कर रिजा, जैसे रजामंदी है भाई, रजामंदी एक आदमी कहता है मैं फुलां से बात नहीं करूंगा मगर उसकी रजामंदी से अब वो राजी हो गया, अगरचे इसको नहीं बतलाया लेकिन वो राजी हो गया और फिर इसने जाकर बात की तो हानिस नहीं होगा। तो जैसे रजामंदी के अंदर दूसरे को इत्तिला देना जरूरी नहीं, रजामंदी के अंदर सिर्फ रजामंद होने वाले का राजी होना काफी है, दूसरे को इत्तिला देना जरूरी नहीं। तो इसी तरह इज़न के अंदर भी, इज़न भी उसका ताल्लुक इजाजत देने वाले से ही है, उसमें दूसरे को इत्तिला देना जरूरी नहीं है भाई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक यह हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ला यहनस, और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं ये हानिस नहीं होगा। लिअन्न अल-इज़्न हुवल इतलाक, इसलिए क्योंकि इज़्न जो है वो इतलाक का नाम है। इतलाक अतलक युतलिक, इतलाक का माना आजाद कर देना यानी इजाजत दे देना, कि इज़्न जो है वो इतलाक का नाम है यानी इजाजत देने का नाम है। वह अन्नहु यतिम्मु बिल आदिनी, और ये इजाजत इजाजत देने वाले से ही पूरी हो जाती है। कर रिजा, जैसे रजामंदी जो है रजामंदी करने वाले से ही पूरी हो जाती है। कुल ना, हम कहते हैं अर रिजा मिन अमालिल कल्बी, हम कहते हैं आपने इज़्न को रजामंदी पर कियास किया, हालांकि दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं करते। यह वजह यह है कि रजामंदी यह दिल का फेल है और इज़्न इसके अंदर तो सुनना जरूरी है भाई, तो लिहाजा दोनों मुख्तलिफ हैं। बात समझ में आ गई। तो कुल ना, हम कहते हैं अर रिजा मिन अमाल कल्बी, के रजामंदी ये दिल के अमाल में से है। वला कदा लिकल इस नुअलामा मर्रा, और इजाजत ऐसी नहीं है उस वजह से जो बात गुजर गई कि इसके अंदर सुनना जरूरी है। आगे देखिए, काल व इन हलफला युकल्लिमुहु शहरन फहुआ मिन हीन हलफा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम खा ली कि वल्लाह मैं फुलां से एक माह बात नहीं करूंगा, तो उसने शहर का लफ्ज जिक्र किया और नकेरा जिक्र किया, और क्या कहता है ला युकल्लिमुहु शहरन। तो इस सूरत में इस महीने की इब्तिदा कब से शुमार करेंगे? कहते हैं जिस वक्त इसे कसम खाई है, तो जैसे ही कसम से फारिग हुआ है अब इस एक महीने के वक्त की इब्तिदा हो गई। तो कहते हैं काल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं व इन हलफा ला युकल्लिमुहु शहरन, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वो फुलां से एक महीना कलाम नहीं करेगा, फहुआ मिन हीन हलफा, तो ये कसम जो है उस वक्त से होगी जिस वक्त इसने कसम खाई है। लिअन्नहु लौ लम यज़कुरिश शहरा, इसलिए क्योंकि अगर ये शख्स शहर का लफ्ज जिक्र न करता, तताअब्बदुल यमीनु, तो ये कसम मुअब्बद होती। भाई देखिए, जब कोई शख्स कसम उठाए और उसके साथ तो वक्त जिक्र न करे तो फिर उसको मुअब्बद शुमार किया जाता है। मसलन एक आदमी कहता है कि वल्लाह मैं जैद से बात नहीं करूंगा, तो इसका क्या माना है? यानी हमेशा के लिए बात नहीं करूंगा, यह माना नहीं है कि सिर्फ एक या दो महीने। तो वो कसम जिसके अंदर वक्त को जिक्र न किया जाए वो मुअब्बद शुमार होती है। तो यहां भी दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर ये वक्त जिक्र न करता तो ये कसम मुअब्बद शुमार होती, लेकिन जब इसने वक्त जिक्र कर दिया तो मालूम हुआ इस वक्त के बाद वाला जो वक्त है वो इसको कसम से निकाल रहा है। तो लिहाजा कसम खाते ही वक्त शुरू हो गया और जब एक महीना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बात करेगा तो हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं लिअन्नहु लौलम यस्कुरी शहरा तताअब्बदुल यमीनु, इसलिए क्योंकि यह शख्स अगर शहर को जिक्र न करता तो यह यमीन मुअब्बद होती, यानी हमेशा के लिए होती। वदिकरु शहरि लिइखराज मा वराअहु, और महीने का जिक्र जो है वो महीने के मा बाद को निकालने के लिए है। फबकियल्लज़ी यली यमीनहु दाखिलन अमलन बिदलालति हालिही, फबकियल्लज़ी यली यमीनहु, तो बाकी रहेगा वो वक्त जो इसकी कसम के साथ मिला हुआ है, वो वक्त बाकी रहेगा दाखिलन कसम में दाखिल होकर, तो वो वक्त जो कसम के साथ मिला हुआ है वो कसम के अंदर दाखिल होकर बाकी रहेगा। आमलन भी दलालत हाल ही, दलालत हाल पर अमल करते हुए। दलालत हाल क्या है कि ये शख्स गुस्से के आलम में कसम खा रहा है कि वल्लाह मैं उससे एक महीने तक बात नहीं करूंगा, एक महीने तक बात नहीं करूंगा। तो मालूम हुआ ये जो एक महीना है इसको वो कसम के अंदर दाखिल कर रहा है। भाई ये माना है फबकियल्लज़ी यली यमीनहु दाखिलन, तो वो वक्त जो इसकी कसम के साथ मिला हुआ है वो कसम में दाखिल होकर बाकी रहेगा। अमलन बिदलालति हालिही, दलालत हाल पर अमल करते हुए। बिखिलाफ इमा इदा काला, बिखिलाफ इसके कि जब किसी शख्स ने कहा वल्लाहि लअसूमन्न शहरन, के वल्लाह मैं एक महीना जरूर रोजे रखूंगा, तो यहां पर इस सूरत में याद रखो उसने शहरन नकेरा जिक्र किया है, तो लिहाजा कसम खाते ही फौरन महीना शुरू नहीं हो गया, बल्कि जिस महीने में भी ये रोजे रखना चाहे रख सकता है। इसलिए क्योंकि यह कसम पहली कसम से मुख्तलिफ है, वहां पर वक्त जिक्र नहीं करता था तो वह मुअब्बद शुमार होती थी, यहां पर अगर यह वक्त जिक्र न करता तो इसने मुअब्बद शुमार नहीं होना था। अगर यह शख्स सिर्फ यूं कहता कि वल्लाह मैं जरूर भी जरूर रोजा रखूंगा, तो सिर्फ एक रोजा रखने से कसम पूरी हो जाती, हमेशा के लिए रोजे रखना इसके लिए जरूरी नहीं है। भाई तो कहते हैं बिखिलाफ इमा इदा काला, बखिलाफ इसके कि जब एक शख्स ने कहा वल्लाहि लअसूमन्न शहरन, के वल्लाह मैं जरूर रोजा रखूंगा एक महीना। लिअन्नहु लौ लम यज़कुरि शहर ला यतअब्बदुल यमीन, इसलिए क्योंकि अगर ये शहर को जिक्र न करता तो ये कसम जो है मुअब्बद न होती। फकान दिक्रुहु लितकदीरि सौमी बिही, तो ये शहर को जिक्र करना इसके साथ रोजे का अंदाजा लगाने के लिए है कि वो इस वक्त के साथ रोजे का अंदाजा लगाना चाहता है कि इतना रोजे में रखूंगा। वह अन्नहु मुनक्करुन, और हाल ये है कि शहर का लफ्ज तो नकेरा है। फतायीनु इलैही, तो इसको मुतायन करना इसी के सुपुर्द है, इसी के हवाले है, ये जिस महीने में भी चाहे रोजे रख सकता है। भाई वह इन हलफला यतकल्लमु, सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम खाई वल्लाह मैं कलाम नहीं करूंगा, और फिर इसने कुरान पढ़ा या इसने सुबहानल्लाह पढ़ा या अल्हम्दुलिल्लाह कहा या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो क्या यह हानिस होगा या नहीं? कहते हैं भाई अगर ये चीजें इसने नमाज में कहीं तो फिर हानिस नहीं होगा, और अगर नमाज से बाहर कहीं तो फिर हानिस हो जाएगा। भाई कहते हैं वह इन हलफला यतकल्लमु, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वो कलाम नहीं करेगा। फकरा अल कुरआन फी सलाती ही ला यहनसु, फिर इसने नमाज के अंदर कुरान पढ़ा तो ये हानिस नहीं होगा। वह इन करा फी गैर सलाती ही हानिसा, और अगर इसने नमाज के अलावा में कुरान पढ़ा तो ये हानिस हो जाएगा। वह अला हादत तस्बीह व तहलील व तकबीर, और इसी पर तस्बीह तहलील और तकबीर भी है। तस्बीह का माना है सुबहानल्लाह कहना, तहलील का माना है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तकबीर का माना है अल्लाहु अकबर कहना। तो कहते हैं इसी पर है तस्बीह तहलील और तकबीर भी, यानी नमाज के अंदर ये तस्बीह यानी सुबहानल्लाह कहे, या तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, या तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहे, तो फिर हानिस नहीं, और नमाज से बाहर कहेगा तो हानिस हो जाएगा। वफिल कियासी यह नसुफी हिमा, और कियास के अंदर ये दोनों में हानिस होगा। कियास तो ये तकाजा करता है कि चाहे नमाज के अंदर कुरान पढ़े चाहे नमाज से बाहर पढ़े, चाहे नमाज के अंदर ये तस्बीह वगैरह पढ़े चाहे नमाज से खारिज, तो कियास तो ये तकाजा करता है कि इसको हानिस होना चाहिए क्योंकि ये कलाम है। ये क्या है? कलाम है। तो कहते हैं वफिल कियास यह नसुफी हिमा, और कियास के अंदर तो ये दोनों में हानिस हो जाएगा। वह हुआ कौल शाफी रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफी रहमहुल्ला का। लिअन्नहु कलामुन हकीकतन, इसलिए क्योंकि ये हकीकतन कलाम है। कुरान भी क्या है? कलामुल्ला है, तो है वो कलाम। जबकि हमारे नजदीक नमाज में हानिस नहीं, नमाज से बाहर हानिस हो जाएगा। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील यह है कि नहू फिस सलात लैसा बिकलामिन उर्फ़ वला शरअन, कि यह नमाज के अंदर कलाम नहीं है, उर्फ़ वला शरअन, न उर्फ के एतबार से और न शरीयत के एतबार से। नमाज के अंदर किरात वगैरह और अल्लाहू अकबर पढ़ा कहा जाता है तो इसको कोई भी कलाम नहीं कहता, और नीस शरअन भी यह कलाम नहीं है। चुनाचे हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारी इस नमाज में कलाम की गुंजाइश नहीं है। मालूम हुआ जो नमाज में चीजें हैं ये कलाम नहीं है भाई। हमारी दलील यह है कि अन्नहु फिस सलात लैसा बिकलाम इन उर्फ़ वला शरअन, कि ये चीजें जो हैं नमाज के अंदर कलाम नहीं है, ना उर्फ के एतबार से और न शरीयत के एतबार से। قال عليه الصلاة والسلام, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन सलातना हादिही ला यसलुहु फीहा शैउ मिन कलाम الناس, इन सलातना हादिही, कि हमारी ये जो नमाज है ला यसलुहु फीहा, इसके अंदर सलाहियत नहीं है शैउ मिन कलाम الناس, लोगों के कलाम में से किसी चीज की इसकी हमारी नमाज में सलाहियत नहीं है भाई। मेरी नमाज में कोई भी कलाम वगैरह करेगा तो नमाज टूट जाएगी। वकीला, और कहा गया है फी उर्फिना ला यहनसु फी गैर सलाती ऐजन, कि हमारे उर्फ में वो गैर नमाज के अंदर भी वो हानिस नहीं होगा, यानी नमाज से बाहर भी ये कुरान पढ़ेगा या तस्बीह तहलील कहेगा तो हानिस नहीं होगा। लिअन्नहु ला युसम्मा मुतकल्लिमन, इसलिए क्योंकि इस शख्स को मुतकल्लिम नहीं कहा जाता, बल क़ारिअन व मुसब्बिहन, बल्कि इसको क़ारी या मुसब्बिह कहा जाता है। बात समझ में आ गई। वलौ काला, और अगर किसी शख्स ने कहा यौम उकल्लिमु फुलानन फमरअतुहु तालिकुन फहुवा अलल्लैलि वन्नहार, भाई ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि यौम का लफ्ज कभी मुतलक वक्त के माना में आता है और कभी यौम का लफ्ज नहार के माना में आता है, यानी सुबह से शाम तक का जो वक्त है इसको भी यौम कहते हैं। तो अरबी जुबान में ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है, और बाबू इकाइद तलाक के अंदर साहिब हिदायत ने तफसील जिक्र फरमाई थी कि यौम की निस्बत जब ऐसे फेल की तरफ की जाए जिसमें इम्तेदाद है जो लंबा हो सकता है तो फिर ये उसके लिए मेयार बनेगा, यानी ये उसकी मुद्दत बयान करेगा। ये क्या करेगा? उसकी मुद्दत बयान करेगा। और जब इस यौम की निस्बत ऐसे फेल की तरफ की जाए जिसके अंदर इम्तेदाद ना हो, तूल ना हो, वो एक लम्हे में हो जाता है, तो फिर इस सूरत में ये मुतलके वक्त के माना में होगा। तो कहते हैं वलव काला, और अगर किसी शख्स ने कहा यौम उकल्लिमु फुलानन फमरअतुहु तालिकुन, कि अगर मैं फुलां से बात करूं तो उसकी बीवी को तलाक है, फहुवा अलल्लैलि वन्नहारी, तो ये कसम जो है लैल और नहार पर महमूल होगी, यानी दिन या रात में जब भी बात कर लेगा हानिस हो जाएगा। वजह क्या? कि इसने यौम का लफ्ज जिक्र किया है, और यौम का लफ्ज जब फेले गैर मुमतद के साथ जिक्र हो तो ये मुतलके वक्त के माना में होता है, और यहां पर भी कलाम करना उसमें भी इम्तेदाद नहीं, और इसी तरह आगे तलाक जो है तलाक देने में भी इम्तेदाद नहीं है। खावन बीवी को तलाक देता है उसी वक्त तलाक हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक आहिस्ता 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 तलाक वाकई होती चली जाए। इसी तरह कलाम के अंदर भी इम्तेदाद और दवाम नहीं है। देखो मैं बोलता जा रहा हूं, मेरे अल्फाज जो जो मेरी जुबान से अदा हो रहे हैं वो मादूम होते चले जा रहे हैं। तो जब हम कलाम करते हैं तो जो लफ्ज अभी आया नहीं उसका वजूद नहीं है, और अगले लम्हे में जब वो मेरी जुबान पर है उसका वजूद हुआ, और फिर साथ ही वो गुजर गया अगला लफ्ज आ गया। तो कलाम के अंदर भी हुरूफ और अल्फाज जो हैं वो मादूम होते चले जाते हैं हम जूं जूं कलाम करते हैं। मालूम हुआ कलाम के अंदर भी इम्तेदाद नहीं है। तो यहां जो यौम का लफ्ज आया यौम उकल्लिमु फुलानन, एक आदमी क्या कहता है यौम उकल्लिमु फुलानन फमरातुहु तालिकुन, कि जिस वक्त वो फुलां से बात करे तो उसकी बीवी को तलाक है। तो यहां ये यौम वक्त के माना में है, तो चाहे दिन को बात करे फिर भी बीवी को तलाक हो जाएगी, चाहे रात को बात करे फिर भी तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वलव काला, और अगर किसी शख्स ने कहा यौम उकल्लिमु फुलानन, कि अगर उसने फुलां से बात की फमरअतुहु तालिकुन, तो उसकी बीवी को तलाक है, फहुवा अलल्लैलि वन्नहारी, तो ये कसम महमूल होगी रात और दिन पर। लिया नस्मल यौमी इदा कुरिना बिफ़िअलिन ला यमतद्दु, इसलिए क्योंकि यौम का इसम जब इसको मिलाया जाए ऐसे फेल के साथ जिसमें इम्तेदाद नहीं होता, युरादु बिही मुतलकुल वक्ति, तो इसके जरिए मुतलक वक्त मुराद होता है। काल अल्लाह तआला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन युवल्लिहिम यौम ईदिन दुबुरा, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ بھئی یہ بات جہاں یہ یوم کی تفصیل ذکر فرمائی تھی صاحب ہدایہ نے باب ایقاع الطلاق وہاں پر بھی یہ آیت کا یہ حصہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا یہ آیت قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا يَوْمَئِذٍ اس دن دُبُرَهُ اپنی پشت کو جو کوئی اس دن اپنے پشت پھیرے گا اور یہ پشت پھیرنا اس فعل میں تو امتداد نہیں تو یہاں یوم کا لفظ وقت کے معنی میں ہے تو جو کوئی جس وقت بھی پشت پھیرے گا چاہے دن ہو یا رات ہو وہ اس کے اندر داخل ہیں بھئی یہ آیت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی بھئی اور غزوہ بدر جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ تھا مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور ان کی تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی جبکہ کفار جو ہیں ان سے کئی گنا زیادہ تھے اور اسلحے سے لیس تھے سر سے پاؤں تک اسلحے میں چھپے ہوئے تھے اور اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی اپنے پشت پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس کے لیے جہنم ہے بھائی تو اس وقت یہ سخت حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا کیونکہ یہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور کفار میں تاکہ مسلمان خوب جم کر لڑیں اور کسی کے دل میں بھی واپس پلٹنے کا خیال نہ آئے بھائی اور پھر بعد میں اس حکم میں نرمی کر دی گئی تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا يَوْمَئِذٍ اس وقت دُبُرَهُ اپنی پشت کو تو اس کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ وَالْكَلَامُ لَا يَمْتَدُّ اور یہ جو کلام ہے اس میں بھی امتداد نہیں ہوتا یہ جو کلام ہے اس میں بھی امتداد نہیں ہوتا میں جوں جوں بولتا جا رہا ہوں الفاظ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں بھائی یہاں پر بعض شارحین نے صاحب ہدایہ پر اعتراض کیا ہے صاحب ہدایہ پر اعتراض کیا ہے بھائی دیکھو یوم کا لفظ جب عبارت کے اندر استعمال ہو ایک وہ فعل ہے جس کے لیے یوم ظرف بن رہا ہے یہ یوم دیکھو یوم یہ یوم پر نصب آ رہا ہے کیونکہ یہ ظرف بن رہا ہے ظرف منصوب ہوتا ہے تو جس فعل کے لیے یہ ظرف بن رہا ہے جو فعل اس کو نصب دے رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یا جس کی طرف یوم کا لفظ مضاف ہو رہا ہے یوم اکلمو یہ اکلمو مضاف الیہ ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا جس کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہے یا جس کی طرف یوم کا لفظ مضاف ہو رہا ہے تو یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ جس کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ تو یہاں پر طلاق ہے میری بیوی کو طلاق ہے یوم اکلم اس دن جس دن میں اس فلاں سے بات کروں تو یہ یوم ظرف ہے کس کے لیے طلاق کے لیے اور اکلم تو اس کا مضاف الیہ ہے تو علماء محققین فرماتے ہیں جس فعل کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہو اس کا اعتبار ہے مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہے تو یہاں بعض شارحین اعتراض کرتے ہیں اعتراض یہ کہ یہاں تو یہ یوم کا لفظ طلاق کے لیے ظرف بن رہا ہے اور صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں والکلام لا یمتد کہ کلام میں امتداد نہیں ہوتا حالانکہ صاحب ہدایہ کو کہنا چاہیے تھا کہ طلاق میں امتداد نہیں ہوتا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یوم کا لفظ ظرف ہے طلاق کے لیے نہ کہ کلام کے لیے تو جواب یاد رکھنا کہ بھائی صاحب ہدایہ یہ ضابطہ پہلے ذکر فرما چکے ہیں اور یہاں طلاق ہی کا اعتبار ہے لیکن صاحب ہدایہ نے کلام کو ذکر کیا یہ بتلانے کے لیے کہ جو علماء مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہیں یا دونوں کا اعتبار کرتے ہیں وہ فعل جو عامل ہے اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور مضاف الیہ کا بھی اور بعض صرف مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کے بھی قول کو اگر لے لیا جائے تو بھی یہاں پر امتداد نہیں ہے کیونکہ جیسے طلاق میں امتداد نہیں ہے مضاف الیہ کلام کے اندر بھی امتداد نہیں ہے جواب سمجھ میں آیا تو یہ ماننا ہے والکلام لا یمتد کلام جو ہے اس میں امتداد نہیں ہے وَإِنْ عَنَ النَّهَارَ خَاصَةً دُيِّنَ فِي الْقَضَائِ صورت یہ اس آدمی نے یہی قسم کھائی کہ جس دن وہ اس آدمی سے کلام کرے تو اس کی بیوی کو طلاق اور بعد میں کہتا ہے یوم کے ذریعے میرا ارادہ دن کا تھا نہار کا تھا رات کا ارادہ نہیں تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں قضاءً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یوم کا لفظ دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے तो कहते हैं वह इन अनन नहार खास सतन, और अगर उसने नहार का इरादा किया खास तौर पर, दुये न फिल कजाई, तो उसकी तस्दीक की जाएगी कजा के अंदर भी, लिया नहू मुस्तामल फी ही ऐजन, इसलिए क्योंकि यौम का लफ जो है दिन के माना में भी इस्तेमाल होता है। वान अबी यूसुफ रहमला अन्नहू ला युदय्यनु फिल कजाई, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है कि कजा के अंदर इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, लिया नहू खिलाफ उल मुतारफी, क्योंकि यह मुतारफ के खिलाफ है। मुतारफ तो यह है कि यौम का लफ्ज जब ज़र्फ बने ऐसे फेल के लिए जिसमें इम्तेदाद नहीं, तो यह मुतलक वक्त के माना में होता है। वलौ काला लैलता उकल्लिमु फुलानन, भाई अगर यौम के बजाय रात का लफ्ज जिक्र करता है लैलता उकल्लिमु फुलानन, तो फिर इस सूरत में सिर्फ रात को बात करेगा तो हानिस होगा, वैसे हानिस नहीं होगा। कहते हैं वलौ काला लैलता उकल्लिमु फुलानन, और अगर कसम खाने वाले ने रात को जिक्र किया, वह हुआ अलल लैल खासतन, तो यह कसम रात पर ही होगी खास तौर पर, लिअन्नहु हकीकतुन फी सवादिल लैल, इसलिए क्योंकि ये लैल जो है यह रात की तारीकी में हकीकत है, यह रात की तारीकी को कहते हैं। कन नहार लिल बयाजी खासतन, जैसे नहार का लफ जो है वह खास तौर पर सफेदी और रोशनी के लिए है, बात समझ में आ गई। वमा जा इस्तेमालुहू, और लैल के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं आया, फिर मुतलकिल वक्त मुतलके वक्त माना में, लैल का लफ्ज सिर्फ रात ही के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है, यौम की तरह मुतलके वक्त माना में इस्तेमाल नहीं होता, बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।